Nathan, हम सबके बीच में कॉन्सेंट्रेशन फॉर फोकस एंड सक्सेस इस टॉपिक पर अपने विचार रखेंगे. गहराई से हम सबको बताएंगे कि कैसे एकाग्रता की शक्ति से जीवन में हम सफल होते हैं, हमारा फोकस बढ़ता है और किन चीजों से डिस्ट्रैक्शन होता है उसकी जानकारी डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन हमारे बीच में रखेंगे. स्वामी भाई, ही इज डियरली नोन एज स्वामी भाई, ही इज अ लाइफ कोच, ट्रेनर, टीचर, काउंसलर एंड अ कंसल्टेंट. आप बीटेक हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू हैव डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड योगा. डॉक्टर स्वामीनाथन हैज कंडक्टेड मेडिटेशन सेशंस on International Day of Yoga in Maharashtra and Uttar Pradesh Vidhan Sabha and has conducted meditation sessions for military and paramilitary organizations across the country including all defense forces, army, navy and military. Jinka presentation natak aapne kal raat ko bhi dekha. He has a unique distinction of conducting training the highest battlefield of the world, that is Siachen Battle School, which is at the India-Pakistan-China border. So we have a very experienced faculty with us. Aap 30 saal se Brahma Kumari Sanstha se associated hain. And you have been honored by the Rotary Club with the Award of Excellence and Nation Builder Award. You have been awarded with the Sunrise Peace Award by Sunrise Peace Mission. Aapki expertise hai bahut sare topics mein. I'll just read few of them. Emotional engineering, journey with harmony, design your destiny, happy attitude, purpose of life, and so many other topics. Very hearty welcome to you. Main behno se request karta hu, Swami bhai ko guldasta dekar aur badge pehna kar unka swagat karein. सभी जरा ताली बजा दीजिए.
ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग. आज के सत्र में मैं आप सभी का बहुत दिल से स्वागत करता हूं. एक्सटेंड ए वेरी हार्टी वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. और आज विशेष आप सभी यहां पर आए हैं, सिल्वर जुबली के सेलिब्रेशंस में आए हैं, तो मैं आपको खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा. मैं आपको एक बहुत सुंदर गिफ्ट देना चाहूंगा और ये गिफ्ट आज आप अपने घर में जाकर अपने बच्चों को और पोतरे पोत्रियों को जरूर जरूर देना, क्योंकि आज डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के समय पर एक बहुत सुंदर हुनर या स्किल की जरूरत है, एंड दैट्स कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता. इस सुंदर 25 वर्ष की यात्रा में आप और हम कल परसों साक्षी होकर ये दृश्य को देख रहे थे. और जब मैं आपके साथ बैठकर इस पूरे प्रोग्राम को देख रहा था, चाहे वो इनॉग्रेशन हो या कल का रैली हो, तो ऐसा लगता है कि हमारा जो टॉपिक है स्पीच सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी में, एक और डायमेंशन आना चाहिए और वो है टाइम. और हम लोग अपने भाई बहने जो 25 वर्ष से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को देख रहे थे और ये महसूस कर रहे थे कि समय कितना स्पीड से निकल गया. 30 वर्ष पहले स्वामी भाई इसी तरह कॉन्फ्रेंस में आए थे. आप में से कितने भाई बहने हैं जो पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कॉन्फ्रेंस में आए, वो जरा हाथ उठाए. देखिए, सो स्वीट. और आपके लिए स्मृतियां भी कितनी ब्यूटीफुल है. कभी भी आप स्वामी भाई से मिलेंगे तो आप जरूर मुस्कुराते हुए कह सकते हैं, हम आपके सिल्वर जुबली प्रोग्राम में आए थे. याद करना भी बहुत सहज हो जाता है. 30 वर्ष पहले जब हम इसी तरह कॉन्फ्रेंस में आए, एक विद्यार्थी बनकर पढ़ाई किए, और थैंक्स टू परमात्मा जो परम शिक्षक हैं, और थैंक्स टू दिव्या दीदी जिन्होंने पढ़ाते पढ़ाते हमको एक और हुनर सिखाया, और वो है शिक्षक बनना, टीचर. तो आप सभी यहां पर जो बैठे हैं, बहुत प्यार से आप सभी अपने अपने क्षेत्र में इतने अनुभवी हैं, लेकिन आज आप एक गॉडली स्टूडेंट बनकर बहुत प्यार से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज सुबह हमारी जब मीटिंग हो रही थी तो मैंने दिव्या दीदी को कहा, कितना अच्छा लगता है जब आप एंट्री करते हो तो आपका अटेंडेंस लिया जाता है। आप बताइए, आप में से किन किन का 100% हर सेशन में अटेंडेंस रहा? वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। वाह, तो आपको तो सर्टिफिकेट जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सिर्फ एक सत्संग नहीं है, इट्स ए यूनिवर्सिटी, इट्स ए विद्यालय, पढ़ाई पढ़ना होता है। और 2001 में जब ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग का जब स्थापना हुई तो दीदी ने बहुत प्यार से कहा कि अभी आप स्टूडेंट के साथ साथ पढ़ते पढ़ते एक शिक्षक का रोल का भी आपको प्ले करना है। उस समय हमको याद ही नहीं आता था कि हम क्या बोलें। पहला सत्र हमने किया था ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग में, माउंट आबू में, जो आप कल परसों घूमने जाएंगे तो आप देख सकते हैं। और जब मैं पहली बार उस सत्र में सामने गया तो ऐसा है ना, हाथ पैर कांप रहे थे। उसी तरह होता है जब एक व्यक्ति पहली बार गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग करता है। आप में से कितनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो जरा हाथ उठाएं। वाह, बहनों के पास भी है, कमाल है, वेरी गुड। तो जब पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो कितना है ना डर लगता है, तो उसी तरह। और इस 25 वर्ष की यात्रा, कितना जल्दी टाइम चला गया। हमको याद आता है जब हम स्पीच सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी आज से 25 वर्ष पहले जो हम सुनाते थे, और कभी कभी YouTube में हम अपने आप को देखते हैं तो ऐसा लगता, बाप रे, उस समय हम कितने ठीक लगते थे, यंग थे। लेकिन इस 25 ईयर्स का टाइम स्पैन, उस समय टॉपिक भी वही होता था, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के लोग ही होते थे, हमको इसी अंतर्गत घूमना पड़ता था, स्पीड सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी में। जैसे हमारे बहुत प्रिय मित्र संजय भाई कह रहे थे कि उस समय एकाग्रता का जब टॉपिक देखते थे तो हम उस टॉपिक को मेमोरी के साथ जोड़ते थे, बच्चों के स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाना, अच्छे नंबर कैसे ले। लेकिन आज हम वही एकाग्रता स्पीड सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी के साथ, कितना ज्यादा हमारा स्क्रिप्ट चेंज हो गया है। क्योंकि सिल्वर रिफ्लेक्शंस की बात है तो मैं स्पीच सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी में एक है ना रमणीक कहानी सुनाता था, तो मैं 25 साल पहले कहानी सुनाता था। आज हम अब वो कहानी सुनाएंगे तो आप लोग शायद मुस्कुराएंगे और मेरे पर हंसेंगे भी कि स्वामी भाई, आज के जमाने पर ये रमणीक कहानी या चुटकुला किस तरह से मैच करता है। तो कौन कौन ये चुटकुला सुनना चाहेंगे, 25 वर्ष पहले की कहानी, वो हाथ उठाए। वाह, थैंक यू डियर स्वीट फ्रेंड्स फॉर योर रिस्पॉन्स। तो मैं उस समय कहानी सुनाता था स्पीड को समझाने के लिए, कि एक बार एक जापानीज टूरिस्ट भारत में आए, भारत दर्शन करने के लिए। और भारत इतना सुंदर देश है, इतनी सुंदर प्रकृति है, पूरा भारत दर्शन करने के बाद ऑन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी ही केम टू मुंबई, और मुंबई से उनको जापान के लिए फ्लाइट पकड़ना था। तो जब मुंबई भी दर्शन कर लिए तो उनको जब एयरपोर्ट जाना था तो उन्होंने एक टैक्सी को बुलाए और टैक्सी में बैठ के टैक्सी ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया, प्लीज टेक मी टू द एयरपोर्ट। तो टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाने लगे, कुछ समय के बाद एक होंडा कार बहुत स्पीड से और टैक्सी को ओवरटेक करके चली गई। तो जापानीज टूरिस्ट बहुत खुश हुए, उन्होंने अपना सर विंडो के बाहर निकालकर उस होंडा को देखते हुए कहा, होंडा वेरी फास्ट, वॉट अ गुड क्वालिटी, मेड इन जापान। हमारे इंडियन ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो सत्यता भी थी, वो गाड़ी चलाते रहे। कुछ समय के बाद एक मित्सुबिशी गाड़ी आई, इतनी स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके चली गई। तो जापानीज टूरिस्ट बड़े खुश हुए, उन्होंने अपना सर विंडो के बाहर निकालकर क्या कहा होगा, आप लोग बात करते हैं ना? हाँ जी करते हैं। क्या कहा होगा? मित्सुबिशी वेरी फास्ट, वॉट अ ग्रेट क्वालिटी, मेड इन जापान। अब ड्राइवर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन गाड़ी चला रहे थे। कुछ समय के बाद एक टोयोटा कार आई, बहुत स्पीड से टैक्सी को ओवरटेक करके चली गई। जापानीज टूरिस्ट बहुत खुश हुए, क्या बोले? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, टोयोटा वेरी फास्ट, वॉट अ गुड क्वालिटी, मेड इन जापान। ड्राइवर साहब मुस्कुराते गाड़ी चला रहे थे। कुछ समय के बाद जब टैक्सी एयरपोर्ट पर पहुंची तो जापानीज टूरिस्ट उतरे और टैक्सी ड्राइवर से पूछा, कितना भाड़ा हुआ? तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा, 10,000 इंडियन करेंसी, 25 साल पहले 10,000 इंडियन करेंसी। The Japanese tourists bade aashchary 10,000, so costly. Kyun? Tumhare bahut buddhiman taxi driver ne kya kiya? Bahut muskurate apna haath meter par rakha aur kaha, meter, very fast, what a good quality, made in India. ये 25 वर्ष पहले की हमारी स्क्रिप्ट है. लेकिन आज ये अगर हम चुटकुला सुनाएंगे तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आज टैक्सी में मीटर तो छोड़ो, आज का जो लेटेस्ट इन्वेंशन और डिस्कवरी चल रहा है, इट इज ड्राइवरलेस कार. भारत में ऑलरेडी आ गया है, टेस्ला का शोरूम मुंबई में खुल गया है. कुछ समय पहले आपने वीडियो देखा होगा, फॉरेन में था, धीरे धीरे मुंबई में भी आ जाएगा. उस व्यक्ति ने ऑनलाइन से, है ना, ड्राइवरलेस कार, एक ऐसी कार जो रोड में चलती है जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है. मीटर तो बहुत दूर की बात है भाई, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है. तो उन्होंने उसको ऑर्डर किया, पेमेंट किया, तो उन्होंने बताया कि हमने आपका जीपीएस सेट कर लिया है और जीपीएस का लोकेशन भेज दिया ओनर को, कि आपको मिनट मिनट लोकेशन मिलेगा और वो आधा घंटा पौन घंटा जितना भी टाइम है पहुंच जाएगा. और वो वीडियो में दिखा रहे हैं कि वहां से शोरूम से टैक्सी निकल रही है, कोई बैठा नहीं उसके अंदर, टैक्सी चल रहा है. मैं कोई मनगढ़ंत फिक्शनल कहानी नहीं बता रहा हूं, ये आज के समय के 2025 की कहानी है, रियल कहानी. तो कार आता है और ये ओनर उसको घर पे बैठ के देखता रहता है और उसको पता चल गया एक मिनट के अंदर वो बिल्डिंग के नीचे आएगी. वो ओनर अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है और ये जो ड्राइवरलेस कार आता है बड़े प्यार से रुकता है और अपने मालिक को बहुत प्यार से स्वागत करता है. फॉरेन में इस प्रकार की ड्राइवरलेस कार जो है वो फिर भी हमको लगता है यथार्थ होगा, भारत में लगता है कभी मुश्किल होगा, लेकिन भारत में शोरूम खुल गया है. तो कैसे काम करता है? सारे सेंसर्स होते हैं एंड नेचुरली टुडेज टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, राइट? वो इतना सेंसर है, उसको पता रहता पूरा लोकेशन. अब भारत में कितना बड़ा चैलेंज है. अब वो ड्राइवरलेस कार जब आती है, सामने गाड़ी होता है तो कैमरा से उसको सेंस करता है, लोकेट देखता है और धीरे स्लो करता है. और जैसे ही गाड़ी आगे चलने लगती है तो ये गाड़ी भी पीछे पीछे चलने लगती है, राइट? भारत में सिचुएशन बड़ा वंडरफुल है और जिन्होंने वो प्रोग्राम किया होगा कितना सोच समझ के लिए भारत के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया होगा, क्योंकि भारत में लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन लोगों के साथ आप देखेंगे जब गाड़ी चला रहे ना तो वहां गऊ भी बड़ी मुस्कुराते हुए बैठी रहती है. अब वो प्रोग्राम किया होगा, नहीं तो भारत में गाड़ी चल नहीं सकती है, फ्लॉप हो जाएगा. तो गाड़ी आके रुकी ड्राइवरलेस कार, आप भी बैठे हो और देखे वहां गऊ माता बैठ के बड़ी प्यार से मुस्कुरा रही है. अब इमीडिएटली सॉफ्टवेयर बनाया कि ये भारत में है और भारत में गऊ माता है, उसको आप हिला नहीं सकते हो. ये सॉफ्टवेयर लगाया होगा भारत में, राइट? अब वो सेंसर के द्वारा देखती है गौ माता बीच में बैठी, इस तरफ जा सकते हैं, वो मेजर करता नो, इस तरफ जा सकते हैं नो. तो क्या करेगी, आप पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्यार से बोलेंगे स्वामी जरा उतरो और उस गौ माता को साइड में जाने के लिए कहो. और अब गुस्सा भी नहीं कर सकते हो, ड्राइवर होते तो दो तीन झाड़ देते थे, अभी आप किसको झाड़ेंगे, कोई बैठा नहीं है. तो आपको थोड़ा ईगो आता है, मैं क्यों जाके गौ माता को उठाऊं. तो उसका फिर से एक प्रोग्रामिंग किया होगा, बड़े प्यार से बोलेगी स्वामी भाई अगर ऑफिस में टाइम पहुंचना है तो उतरो और गौ माता को साइड में करो. और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे उतरना पड़ेगा, गौ माता को प्लीज ना माता जी थोड़ा साइड में बैठिएगा ना, और फिर वो गाड़ी आगे जा सकती है. इस प्रकार का जो सिस्टम चल रहा है, सुरक्षा की बात आज हम पिछले 25 साल पहले कहते थे तो क्या कहते थे, हम कहते थे सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो, ट्रेन के लिए कहते थे ACD एंटी कोल्यूशन डिवाइस की बात करते थे. और आज मैं कुछ फॉरेन देशों में सेवा के लिए गया था तो गाड़ी में बैठे और जैसे गाड़ी में मैं बैठा तो मैंने सीट बेल्ट लगा दिया तो भाई मुस्कुराते हुए कहे स्वामी भाई बहुत अच्छे संस्कार आपके, आपने सीट बेल्ट लगा दिया. मैंने कहा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग का मेंबर हूं भाई, है ना, सीट बेल्ट तो लगाना स्वाभाविक बनता है. बोला अच्छा है, क्योंकि भारत की जो कार होती है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया ना वो साउंड करती है, बीप साउंड. और फिर भारत वाले जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे लेकिन कुछ एक है ना वो खांचे में लगा देते हैं, गाड़ी चलती है.
ये 20 वर्ष पहले की कहानी है हमारी सुरक्षा की जो संस्कार हैं। लेकिन अभी वो भाई ने कहा बहुत प्यार से, स्वामी भाई अभी कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया आपकी इंजन स्टार्ट ही नहीं होगी, इट विल नॉट स्टार्ट, अब कितना भी धक्का मारो। सीट बेल्ट लगाना इट्स कंपल्सरी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग अवर संस्कार, ये 25 वर्ष की इस यात्रा में हमने देखा, राइट? हम उस समय कुछ फॉरेन डेस्टिनेशन में हम कार में जा रहे थे, तो वी वर ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, बीच बीच में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करती है, अगर ड्राइवर गाड़ी को चलाते थोड़ा नींद आ रहा है तो बोलती है, नाम लेकर बोलेगी, विनोद यू आर स्लीपिंग, आपको नींद आ रही है, गाड़ी को रोको, फ्रेश हो, फिर गाड़ी चलाएंगे। एक बार बोलते तो थोड़ा सा वो ऐसे से कर लेता, फिर गाड़ी चलाता, और मैं सुन रहा हूं, बोले तीन बार बोलेगी, तीन बार में नहीं सुने तो गाड़ी अपने आप साइड में जाकर रुक जाएगा, जाओ हाथ पैर मुंह धो फिर बैठो। एंड प्लीज माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, आने वाले समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। कल मैं गिरीश भाई को सुन रहा था, मुस्कुराने की बात कर रहे थे, और कह रहे थे 11:30 बजे तक मुस्कुराते हुए रहना, हमारे छोटे भाई है वो, राइट? ही इज माय यंगर ब्रदर, और उसका क्लास मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कुछ चीज हम सीखते हैं। उन्होंने जो बोला ऐसे ही मजाक में नहीं बोला है, आने वाले समय पर कार ऐसा होगा कि जब आप उसमें बैठेंगे और अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे तो वो गाड़ी इंजन स्टार्ट ही नहीं होगी। इससे मजाक नहीं कर रहे थे कि भाई मुस्कुराओ मुस्कुराओ, यस। अब तनाव में बैठे वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका माइंड ओवर मैटर पर काम होता है। तो कौन कौन चाहते हैं कि गोल्डन जुबली में आप ड्राइवरलेस कार चलाएं, वो जरा हाथ उठाएं, वाह। तो आपको मुस्कुराना आज से सीखना पड़ेगा, नहीं तो गोल्डन जुबली में आपकी कार में आप बैठकर गाड़ी इंजन स्टार्ट ही नहीं होगी, राइट? एक बार हम और गिरीश भाई एक ही प्रोग्राम में थे, तो वो मुस्कुराना आनंद की बात कर रहे थे, तो एक सामने एक माता जी हाथ खड़ा कर करते थे, बोला आप लोग दोनों भाई जो है ना बहुत खुशी और आनंद की बात करते हो, पता आप लोग दो भाई इतने खुशी और आनंद में क्यों रहते हो? तो मैं भी ऑडियंस में बैठा था, गिरीश भाई मुस्कुराए, अच्छा बहन जी बताइए, बोला दोनों भाई इसलिए बहुत खुशी और आनंद में रहते हैं क्योंकि आप दोनों भाइयों के ना तो बाल हैं ना तो बच्चे हैं, तो खुशी तो आप बोलते रह सकते हो, बाल बच्चे ही नहीं आपके, करेक्ट? 25 वर्ष पहले हम लोग अध्यात्म जो बताते थे, क्यों बताते थे, हम लोग कहते अध्यात्म अगर होंगे तो आपसी संबंध बहुत अच्छे होंगे, तनाव प्रबंधन होगा, नशा मुक्त होगा। लेकिन आज आप सिल्वर जुबली में आए हैं, स्पिरिचुअलिटी इतना बड़ा परिवर्तन करेगा, सिर्फ नशा मुक्त या तनाव मुक्त के लिए नहीं है। माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम इंटेलिजेंस विल टेक अस टू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। लेकिन क्योंकि आप घर गृहस्थ में रहते हैं, बिना बाल बच्चे वाले तो मुस्कुरा सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा ट्रेन का उदाहरण देता हूं। ट्रेन में इंजन सिर्फ है, अकेला इंजन है, तो जिस रफ्तार से जहां जाना चाहे वो जा सकता है, राइट? उसी तरह एक व्यक्ति अगर बाल ब्रह्मचारी है तो कब मैं सुबह उठना है, कब मुझे सोना है, मुझे कहां जाना है, किनसे मिलना है, आजादी का अमृत महोत्सव है भाई, मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। लेकिन एक ट्रेन में इंजन के साथ बहुत बोगी अगर लगी हुई है तो आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, कौन से स्पीड से आप जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां रुक रहे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बताइए, बाल ब्रह्मचारी लोगों को आध्यात्मिकता की ज्यादा जरूरत है कि घर गृहस्थ में रहने वाले लोगों को आध्यात्मिकता ज्यादा जरूरत है, बताइए? यस, यस, एब्सोल्युटली राइट। और ये तो मैं संबंधों के बारे में कह रहा हूं, आने वाले समय पर जो हम टॉपिक रख रहे हैं ना, स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी, कुछ समय के बाद आप ऑडियंस कहेंगे दिव्या दीदी को कि टॉपिक को चेंज करिएगा, स्पिरिचुअलिटी, सेफ्टी एंड स्पीड होगा, आध्यात्मिकता सिर्फ तनाव प्रबंधन के लिए नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ड्राइवरलेस कार के बाद आने वाले समय पर जो इन्वेंशन चल रहा है क्वांटम इंटेलिजेंस पर, मेरा जो पीएचडी और रिसर्च एरिया जो है वो है इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और क्वांटम मींस एनर्जी. कुछ समय पहले मुझे पुणे के एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने निमंत्रण दिया, और वो कैसे फैकल्टी को ढूंढ रहे थे जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, क्वांटम लेवल से जुड़े और जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं. तो घूमते फिरते फिरते कहां ना कहां से रेफरेंस आते साथ मेरे पास वो इनविटेशन पहुंचा. तो जो भाई कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे पहले से ब्रीफ किया कि स्वामी भाई, आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलेंगे, पता है वो किस सेक्टर पर काम कर रहे हैं, और आप ट्रांसपोर्ट ट्रैवल के लोग भाई बहने सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आने वाले समय पर किस प्रकार का इन्वेंशन और डिस्कवरीज होने वाले हैं. राइट आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आप देखते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या जो भी है, वो 20 वर्ष पहले का रिसर्च आज एप्लीकेशन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है. 15-20 वर्ष पहले हमको कहीं जाना होता तो लोगों से पूछते पूछते जाते थे, और अगर आपसे उस समय कहा गया कि ऐसा कोई एक सिस्टम बनेगा कि बस आप लगाओ करंट लोकेशन फाइनल डेस्टिनेशन, वो आपको बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए पहुंचाएगी विद 10 मीटर्स प्लस एंड माइनस एक्यूरेसी पर. 20 वर्ष बोलते तो आप विश्वास नहीं करते थे, आज हमारे पास वो सिस्टम है इसलिए आप उसको स्वीकार करते. अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, किस लेवल पर काम कर रहे हैं. राइट तो जब मैं वो पुणे में गया तो उनके जो एचआर और प्रोजेक्ट मैनेजर थे, मुझे बहुत प्यार से समझाया. मैंने कहा जितना सहज मुझे आप बताओगे ना, फिर मुझे समझ में आएगा कि मैं किस टॉपिक पर सेशन लूं. तो उन्होंने कहा जस्ट इमेजिन करिए आप ड्राइवरलेस कार में बैठे हो, कोई ड्राइवर नहीं है, आप पीछे बैठे, गाड़ी को अपने लोकेशन दिया कि मुझे ऑफिस जाना है, बहुत आराम से वो गाड़ी ऑफिस में पहुंचती है. आपका ऑफिस 10-15-20 वर्ष का 20 माले का ऑफिस है, 10-15 फ्लोर्स. तो आप जब अपने कार से उतरते हो तो आपके पास एक रिमोट होता है, आप टक टक करते हो तो कार को पता है करंट लोकेशन ऑफिस बिल्डिंग के नीचे है. अब मेरा जो पार्किंग स्पेस है उसको पहले से लोकेट किया गया है, तो अपने आप वो गाड़ी जाकर वहां पार्क हो जाती है. यहां तक तो ठीक है. अब आप लिफ्ट में चढ़ते हो, आपका ऑफिस से 15 या 20 फ्लोर में है, आप वहां 6-8 घंटा मीटिंग में और जो भी आपकी जो काम है, कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है. अब देखिए जो इन्वेंशन आने वाले समय पर होने वाला है, जब आप 6-8 घंटा आपका कर्म क्षेत्र का काम खत्म हो गया, अब आपको घर जाना है, तो अभी तक आप क्या करते थे, रिमोट टक टक करते थे. तो जैसे आपने 15वां फ्लोर में रिमोट को प्रेस किया, वो सिग्नल उस पार्किंग स्पेस में वो कार को पहुंचता है, जब तक आप नीचे आते हो तो कार आकर आपको खड़ी हो जाती है. ये तो बहुत आराम से हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन अब जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं सो ब्यूटीफुल, अब हमें रिमोट की भी जरूरत नहीं है. जैसे ही आपने संकल्प किया कि मुझे घर जाना है, आपका संकल्प वो कार को समझ में आना चाहिए. वी आर वर्किंग ऑन दिस लेवल. और क्योंकि मैं इंजीनियर से 2 दिन साथ में रहा, तो मैं बड़े विश्वास के साथ और सत्य बात आपके सामने रख रहा हूं. अब जैसे ही आपने संकल्प किया वो कार को समझ में आना चाहिए, कार धीरे से स्टार्ट करती है. अब आप लिफ्ट के सामने खड़े होते तो लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा है, अचानक आपको याद आता है डॉक्टर कहते हैं कि भाई अपना सेहत का ध्यान रखो, तो आप कहते हैं काम करते 4-5 फ्लोर हम वॉकिंग करते हैं, फिर वहां लिफ्ट मिलेगी तो वहां चढ़ जाएंगे. आपने जैसे ही संकल्प को चेंज किया और आप सीढ़ी से उतरने लगे, उस कार को समझ आना चाहिए कि भाई ओनर का मन चेंज हो गया है, अब वो लिफ्ट से नहीं आ रहा, वो सीढ़ी से आ रहा है, तो वो अपना स्पीड को कम करेगा. जब आप 15 फ्लोर से 10वां फ्लोर पर आते हो तो आप देखते हो 10वां फ्लोर में 9 के आसपास वो लिफ्ट है, आप वहां खड़े हो जाते हो, क्लिक करते हो, 9वां फ्लोर खुलता है लिफ्ट, आप एंट्री करते हो, वो कार को समझ आना चाहिए कि आप मालिक जो है लिफ्ट से आ रहा है, वो स्पीड को बढ़ाता है, कैलकुलेट करता है वो. और जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हो, वो कार मुस्कुराते हुए कहता है आइए आइए बैठिए. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द इयर्स टू कम. ये तो मैंने आपको उनका केस स्टडी बताया. अब वो इंजीनियर्स उसको कहते हैं स्वामी भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं, गाड़ी को हमने करंट लोकेशन फाइनल लोकेशन दे दिया तो गाड़ी तो जहां जाना जा सकती है, सेंसर्स है, सब कुछ है, लेकिन अब इस संकल्प करने वाली शक्ति कौन है, विच इज द पावर विच क्रिएट्स द थॉट. जब तक हमने उसको नहीं पता लगाया हम इसका प्रोग्राम बना ही नहीं सकते. और पिछले 3 दिनों से आपको इसी के बारे में बताया गया था. उस गाड़ी में ड्राइवरलेस कार तो फिर भी हो सकता है. 25 वर्ष पहले जब हम मुंबई में थे तो राज्यों के बारे में मुझे सिखाएगा सिंपल तरीके से. और हमारी शुरुआत ही राज्यों का स्टार्ट हुआ गाड़ी और ड्राइवर से. चित्र दिखाया गया. गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है. ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है. उसी तरह शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है. इसका ड्राइवर कौन है? यहां से क्लाइंट को ड्रॉप करिए, यहां से क्लाइंट को ड्रॉप करिए. मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं. इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज एनर्जी, इन द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज क्वांटा. आत्मा ये संकल्प करती है. तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं 3 दिन ये आत्मा कहां रहती है, कैसे काम करती है, विच इज अ सोर्स जो संकल्प करती है, किस आधार पर जैसे उन्होंने सेंसर बना दिया है रोड के ऑब्स्ट्रक्शन और इसको लेकर, उसी तरह अब वो सारा ब्रेन के अंदर आत्मा कहां रहती है उसको वो ट्रैक कर रहे हैं. इसलिए माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप अपने ऑफिस में जाएंगे, आरटीओ में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, और ब्रह्मा कुमारी सिर्फ आध्यात्मिकता के बारे में आत्मा बोल रही थी. प्लीज अगर आप ऐसे बोलते हो मतलब आने वाले जो गोल्डन एनिवर्सरी का जो वो फोरकास्ट आप समझ ही नहीं पा रहे हो. इसलिए आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, सेफ्टी एंड देन स्पीड शुड कम. 25 वर्ष पहले भी हम आत्मा का ज्ञान सुनाते थे. और अगर आप तनाव प्रबंधन की बात करें तो एज पर डॉक्टर सबसे बड़ा जो डर का कारण है एज पर डॉक्टर्स, और वो है द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, सबसे बड़ा डर. जब कोविड ठीक हुआ और मुंबई के जब लोकल ट्रेन चलने लगे तो मैं एक लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहा था. मैंने देखा सामने एक युवक बैठा था, मास्क वास्क लगा के बैठा था. थोड़े देर के मैंने देखा वो युवक क्या करता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता, फिर मास्क को लगा देता है. मैं कहा वाओ, वेरी हेल्थ कॉन्शियस, अमिताभ बच्चन ने कितना जागृति फैलाया. वंस आई वॉज इन्वाइटेड टू द इंडियन एयरफोर्स बैंगलोर यलंका. ऑडिटोरियम में हम जा रहे थे तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे. मुझसे पूछा सर आपको पता है आप किसको एड्रेस करने वाले हैं? मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है, पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स. बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई उड़ाते हैं, पता है उनका सबसे बड़ा डर कौन सा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता आप बताइए. बोला सबसे बड़ा डर इज अ फियर ऑफ डेथ, सुपरसोनिक जेट है ना, इतनी तेजी से वो फ्लाइट चलता है, छोटा सा गलती के चकनाचूर हो जाएंगे. प्लीज हेल्प देम आउट टू कम आउट फ्रॉम द फियर. मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं. और जब मैं आत्मा का परिचय दे रहा था मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है, सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय. एक पायलट खड़े होकर कहते नो सर आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है. मैंने उसको देखा और मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने परिवार का और बच्चों का होगा. एम आई राइट? वो सोचने लगे. उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? देशम 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 World War III. किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता, ना आपको है ना मुझे है. बट वी सर्टनली फियर द डेथ ऑफ अ क्लोज वंस. 25 साल पहले हम यही उदाहरण बताते थे, लेकिन 2025 में क्या अंतर आया पता है आपको? मुझे याद आता है इंटरनेशनल योगा डे, मैं 2025 की कहानी बता रहा हूं. मुझे सेवा के लिए योगा डे के प्रोग्राम के लिए रशिया जाने का सौभाग्य मिला. और मैं आपको खुशखबरी देता हूं, हमारे रशिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं. सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया सेंटर है, मॉस्को में हमारा बहुत अच्छा सेंटर है, जितने भी अर्स्टवाइल USSR के जितने भी 19 प्रोविंसेस है सब जगह ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है. राइट? तो जब मैं योगा डे के लिए जाना था तो मुझे करीब रात के 13 जून को करीब 12 बजे मुझे दिल्ली एयरपोर्ट रिपोर्ट करना था, 4:30 बजे मेरी फ्लाइट थी यहां से लेकर मॉस्को, फिर मॉस्को से आगे की फ्लाइट थी सेंट पीटर्सबर्ग। तो हम उस दिन 12 जून मुझे याद आता है दोपहर के टाइम पर हम पैक कर रहे थे, वेट देख रहे थे कि भाई वेट का चक्कर ना पड़े ज्यादा, और रशिया में क्योंकि आम बिल्कुल नहीं मिलते हैं तो वहां की दीदी ने कहा स्वामी भाई है ना भारत से आ रहा ना थोड़ा आम लेकर आना, और भारत का आम तो कितना फेमस होता है, तो उसका सब वेट हम लोग देख रहे थे। और मुझे इतने फोन आने लगे सब जगह, स्वामी भाई कब निकल रहे हो, जाना जरूरी है क्या? मैं कहा भाई ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार विदेश में जा रहे हैं, आप लोग बार बार क्यों फोन कर रहे हो? तो एक किसी ने फोन करके कहा नहीं स्वामी भाई रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना। मैं कहा कितने वर्षों से युद्ध चल रहा है भाई, योगा डे का प्रोग्राम है, सेवा के लिए बुलाया गया, एम्बेसी का प्रोग्राम है वो। फाइनली एक ने फोन किया तो मैंने कहा कितना फोन मुझे आया भाई, आप लोग क्यों इतना चिंतित हैं? फिर किसी ने मुझे उसका कारण बताया, स्वामी भाई आपने न्यूज देखा क्या? मैं कहा नहीं। बोला आप न्यूज देखिएगा। तो मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोला नहीं बोलना ठीक नहीं लगता, आप न्यूज देखिए। तो मैंने यूट्यूब में न्यूज लगाया, जैसे ही मैंने न्यूज देखा मुझे कारण समझ में आया, 12 जून 2025 अहमदाबाद प्लेन क्रैश। और जैसे ही मैंने दृश्य देखा मुझे समझ में आया क्यों लोग, क्यों रिश्तेदार, क्यों मेरे फ्रेंड्स फोन कर रहे हैं। उसके बाद एक दोस्त ने फोन किया तब मुझे कारण समझ में आ गया था। मैं कहनी मैं जा रहा हूं। बोले स्वामी भाई मुझे पता है आप ईश्वर आपके साथ है, आप सेवा के लिए जा रहे हैं, आप स्वस्थ और सुरक्षित जरूर भारत लौटेंगे, लेकिन एक दोस्त होने के कारण मैं आपको एक सजेशन दूं। मैं क्या बताइए? बोला मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में फ्लाइट के बदले में ट्रेन में जा सकते हो क्या? मैं कहा वाह कितना सुंदर सजेशन है। 2000 में जो मृत्यु का भय और 2025 में पता अंतर क्या है? अंतर ये है कि 2000 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, बस न्यूज थोड़ा सुन लेते थे, थोड़ा चित्र न्यूज़पेपर में देख लेते थे, थोड़ा सा दूरदर्शन में या चैनल्स में आ जाता था, लेकिन 2025 में वो डर को जिस तरह परोसा गया थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो प्लेन का पूरा मैपिंग किया गया, फ्लाइट चल रही है, परिवार बच्चे हैं, और 30 सेकेंड के अंदर वो पूरा अग्नि का गोला बन गया। सिर्फ बड़े नहीं ये बच्चे भी देख रहे हैं। इसीलिए जब आप यहां से जाएंगे ना तो बच्चों को 7th standard physics जरूर सिखाइए। 7th standard physics एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, 7th standard physics। तो एक काम करना, जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा जैसे ही आप घर जाएंगे आपके बच्चे पोतरे परिवार के सदस्य आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर कहेंगे पापा आपका चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ क्यों है? तब कहना बच्चे वो ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम था ना सिल्वर रिफ्लेक्शंस, वहां जाकर मुझे समझ में आया मैं कौन हूं। तो छोटू पूछेगा पापा आप कौन हो? तो बहुत प्यार से अपना हाथ उस बच्चे के सर पर रखना, बहुत प्यार से उसको देखना मुस्कुराते हुए, और फिर पूछना छोटू आपको पता है आप कौन है? तो बच्चा पूछेगा पापा मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। फिर बच्चे से पूछना बच्चे आपको पता है आप कौन है? पापा बताइए ना मैं कौन हूं? तो बहुत प्यार से बोलिए, सभी मेरे साथ बोलिए, बोलिए बच्चे बोलिए, तो जोर से बोलो, अरे डराओ नहीं ना, छोटू को डरा देते हो, वैसे ही डर का इतना माहौल है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलिए बच्चे, और थोड़ा प्यार मोहब्बत भरो बच्चे, मीठे बच्चे आप हो तारे जमीन पर। फिर छोटू पूछेगा पापा आप कौन हो? तो इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, सभी बोलिए आई, थोड़ा प्यार से बोलिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल, आगे बोलिए। वो छोटू मुस्कुराएगा पापा ये मेरा एलकेजी का सिलेबस है, अब ये सीखने के लिए इतनी दूर गए थे, ये जीवन की सत्यता है कि हमें शरीर से अलग 31 सूक्ष्म चैतन्य शक्ति अजय अमर अविनाशी, जितना ये डर बढ़ेगा, इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में एंट्रोपी कहते हैं डिसऑर्डर, उतना आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना जरूरी है।
राइट
आप आत्मा को समझो या नहीं समझो, मानो या नहीं मानो, यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन प्रकृति ने एक बहुत सुंदर तोहफा आपको और हमको दिया है हमारे तनाव को प्रबंधन करने के लिए। और वो प्रकृति का एक सुंदर तोहफा कौन सा है, कौन सा है? इस संसार में हर व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है, लेकिन प्रकृति ने, जैसे गौ माता है, प्रकृति भी मां है, उसका एक डिफॉल्ट सिस्टम बना हुआ है हमारे तनाव का प्रबंधन करने के लिए। प्रकृति का सबसे सुंदर तोहफा है और वो है नींद, स्लीप। चाहे रेलवे हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर में जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो 24/7 काम कर रहे हैं। और ऐसे समय पर ये तोहफा को समझना जरूरी है। आप में से कितनों को नींद के बारे में जानने की इच्छा है, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। वाओ, अगर किसी ने हाथ नहीं उठाया मतलब यहां बैठ के वो सो रहे हैं, उनको उठाइएगा। अच्छा बताइए, वैसे मैक्सिमम लोग ने हाथ उठाया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप रोडवेज, रेलवे, टूरिज्म के साथ हो। और अगर आप कहेंगे नहीं मैं तीनों में जुड़ी नहीं हुई हूं, फिर भी नींद को जानना बहुत जरूरत है। वैसे कितने घंटे सोना चाहिए? 6 घंटे? नहीं, आपके पोतरों के बारे में नहीं बोल रहा, आपके बारे में पूछ रहा हूं। अब पोतरों की मेजरमेंट मत दीजिए, कितने घंटे सोना चाहिए? मैं आज आपको खुशखबरी देता हूं, आरटीओ वाले, रेलवे वाले, टूरिज्म वाले, वापस जाने के बाद प्लीज अपने सहपाठियों को, जो साथ में काम करते, उनको ये समझाइएगा, उनको ये समझाइएगा कितने घंटे सो रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है। क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज आने वाले समय पर समाज में जो सबसे बड़ी चुनौती होगी पता क्या है, नेटफ्लिक्स के सीईओ से पूछा गया, नेटफ्लिक्स सुना है, सीईओ से पूछा गया, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन है? नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कॉम्पिटिटर निद्रा है, नींद। आने वाले समय पर हमारे बच्चों को नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आ रही है तो एंग्जाइटी होगा, एंग्जाइटी हो रहा है तो डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन विल लीड टू सुसाइडल टेंडेंसीज। कोटा का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान में बहुत सुंदर शहर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोटा को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ सुसाइड कैपिटल ऑफ भारत। वहां के बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको IIT में एडमिशन नहीं मिल रहा है, वैलिड रीजन। अब मैं आपको बताता हूं, भारत के जो बेस्ट IITs हैं, मैं टॉप लेवल IITs की बात कर रहा हूं, नए IITs की मैं बात कर नहीं कर रहा हूं, टॉप लेवल IITs जहां पे स्वामी भाई को खुद जाने का सौभाग्य मिला, और वहां के जेनेक्स बच्चों को, जेनजी बच्चों को मिलने का चांस मिला, बड़े बुद्धिमान है। आश्चर्य होगा आपको यह जानकर, कोटा के बच्चे इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको IIT में एडमिशन नहीं मिलता है। हर IIT में हर दिन, हर महीने कितने सुसाइड केस हो रहे हैं। मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट IIT, बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं। जब एक बंदा IIT में जाता है तो उसको एक ब्रांड के साथ एसोसिएट करता है, जीवन भर सफलता, लेकिन IIT के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मैं किसी भी IIT का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि IIT के प्रति जितना आदर और सम्मान आपका है, उसे बहुत अधिक सम्मान मैं उनके प्रति रखता हूं, क्योंकि ऐसे बच्चों से, ऐसे इंस्टीट्यूट में मैं गया हूं। लेकिन एक IIT का नाम लूंगा, और उस IIT का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए आगे कदम उठाया। एंड दैट IIT इज भारत का पहला IIT, एंड दैट इज IIT खड़गपुर। वहां पर भी आत्महत्या होते थे पिछले एक महीने में, अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे गूगल में सर्च करके, पिछले 1.5 महीने में 3 से 4 आत्महत्या केसेस IIT खड़गपुर में हुआ। और IIT खड़गपुर ने उसका समाधान क्या किया? बहुत ही ब्यूटीफुल समाधान। आप चाहते ना आपके बच्चे IIT में एडमिशन ले? आपके बच्चे अगर IIT खड़गपुर में एडमिशन लेंगे तो वो आपको फोन करके बताएंगे, मम्मा IIT खड़गपुर में भी एक नया पोस्ट को जनरेट किया गया। अभी तक उनका जो पोस्ट होता था है ना, वो था डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, एक पोस्ट है डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, जैसे डायरेक्टर होता है चोरी होता है, वैसे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर उनका काम क्या है, हॉस्टल का एडमिशन, हॉस्टल में कैंटीन भोजन आने जाने का लॉजिस्टिक्स एडमिशन, ये सब डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का काम है। पहली बार आईआईटी खड़गपुर ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया और उस पोस्ट का नाम है डीन स्टूडेंट्स वेलबींग। वेलबींग वेलफेयर नहीं, वेलफेयर तो ही वेलबींग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति, उसकी वेलनेस अगर हम करेंगे तो बहुत बुद्धिमान आईआईटी खड़गपुर के बच्चे आत्महत्या करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे। अब मैं मुझे याद आता 18 या 20 वर्ष पहले आईआईटी खड़गपुर में जाने का हमें सौभाग्य मिला, राइट? इसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वेलबींग के लिए काम करना। और आज मैं आपको एक बहुत सुंदर गिफ्ट देता हूं और मैं चाहूंगा आप अपने बच्चों को ये गिफ्ट जरूर दीजिएगा। लेकिन वो गिफ्ट, एकाग्रता का गिफ्ट देने के पहले, कितना घंटे सो रहे इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आपका मन, वो क्वालिटी ऑफ स्लीप कब होगा, जब आपका मन डेल्टा स्लीप में आएगा। डेल्टा स्लीप, डेल्टा स्लीप का मतलब क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल अगर आप समझ जाएंगे, डेल्टा स्लीप मतलब हमारा मन एकदम शांत 1-2 साइकिल पर सेकंड। आपने कहा ना 6-8 घंटा सोना चाहिए, एकदम सही जवाब है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 6-8 घंटे में कितना समय आपका मन डेल्टा में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, अगर मैं 7वीं कक्षा के बच्चों के बारे में कहूं, 7th स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको स्वरूप मालूम होना चाहिए, क्योंकि नींद के हिसाब से छोटा बच्चा बहुत समय सोता है। हिसाब देखिए, बच्चा जैसे ही जन्म लेगा एकदम है ना 24 घंटे में 23 घंटा सोएगा, एक घंटा उठेगा, भोजन वोजन करेगा, सबको मुस्कुराएगा, फिर सो जाएगा। चलिए हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, सभी जागृत रहना, कोई सोएंगे नहीं, इस गीत को बहुत अच्छी तरह सुनेंगे।
Thank you.
ओम शांति। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन टॉपिक को आगे बढ़ाने के पहले आप में से कौन कौन यहां बैठे हैं जिनको अपने बच्चों से और पोतरे पोत्रियों से बहुत बेहद प्यार है, वो जरा हाथ उठाए। आजू बाजू देख ले, अगर कोई हाथ नहीं उठा रहा है तो सोई नहीं ना कोई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन कौन चाहते हैं कि आपके बच्चों को और पोतरे पोत्रियों को अच्छी गहरी डेल्टा नींद आए, वो जरा हाथ उठाए। वाह, बहुत अच्छा, वेरी स्वीट ऑफ यू। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया मतलब यू आर वर्किंग इन अ बीटा लेवल। बीटा मतलब अलर्ट, एक्टिव। डेल्टा इज गहरी नींद। 6 से 8 घंटा सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस 6 से 8 घंटा में कितना समय आप डेल्टा में आते हो। तो मैं उदाहरण बता रहा था, 7वीं कक्षा का बच्चा, आप बताइए जब वो सोता है कितना समय उसका मन डेल्टा स्टेज पर जाता होगा। जस्ट गेस इट आउट, कितना समय? हाँ जी सर, 5 आवर्स। आप कौन से शहर से आए हैं? वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो 5 घंटे से इमीडिएटली आप 45 मिनट्स पर आ गए। वाओ, बहुत अच्छा। दिल्ली राजधानी है तो महान है ना, दिल्ली दरबार के लोग बड़े बुद्धिमान भी होते हैं। ग्रेट, 5 घंटा भी हो सकता है, 45 मिनट्स भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आज से 15 साल पहले हम लोग नवी मुंबई के 7वीं कक्षा के बच्चों पर प्रयोग कर रहे थे। उस समय इतना मोबाइल भी प्रचलित नहीं था, और उस समय हम लोग ने जब 7वीं कक्षा के बच्चों, मोबाइल था लेकिन बच्चों का एक्सेस कम था, उस समय मैंने देखा नवी मुंबई के बच्चे, मोर देन 60% जो विद्यार्थी और बच्चे हैं 7वीं कक्षा के, वॉज नॉट इवन कमिंग टू द अल्फा लेवल। डेल्टा तो बहुत दूर की बात है, 60% बच्चे। और आज आपका हर बच्चे के पास मोबाइल फोन, जस्ट इमेजिन करिए। और ये कंट्रोल करना इसलिए जरूरत है क्योंकि आने वाले समय पर हमारा मन ही वो गाड़ी चलाएगा। अगर मन विचलित है, वैसे भी ड्राइवर को रखकर कितने दुर्घटना हो रहा है, आने वाले समय पर अगर मन को ठीक नहीं किया गया, सुरक्षा इतना डेंजरस लेवल पर हम जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है लेकिन रियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो काम करेगा, अपने आप उत्पादन नहीं होता किसी का भी। किसी ने रियल इंटेलिजेंस को यूज किया, आप और हम बस उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम तो कर रहे हैं ना उस पर, राइट? और जो गहरी नींद होती है ना डेल्टा, उसके लिए हिमालय में जाकर कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप सभी यहां जो बैठे अनुभवी हैं डेल्टा स्लीप के। सपोज आपके घर में कोई फंक्शन है, बर्थडे होगा, शादी होगा, कुछ भी हो सकता है, अब 1 महीने से लगे हुए रिश्तेदार को बुला रहे हो, उनका भोजन, उनका अकोमोडेशन, उनका ट्रैवल सब कुछ कर रहे हो। धीरे धीरे वो डेट नजदीक आता गया, रिश्तेदार आने लगे, आपने बहुत अच्छा ट्रैवल अरेंजमेंट्स किया, सबको रहने की व्यवस्था अच्छा की, भोजन, गिफ्ट सब कुछ। फिर धीरे धीरे फंक्शन बहुत अच्छा हो गया, अब रिश्तेदार वापस जाने लगे और एक एक को आप टाटा बाय बाय विदाई भी कर रहे हो। फिर जब सब चले गए तो आपको लगा मैं थोड़ा विश्राम करता हूं, तो आप क्या करते हो, सब जाने के बाद आप बेड पे जाकर लेटते हो, इतनी गहरी नींद। तो आपकी पत्नी आपको उठाती है, हेलो उठो, क्योंकि 1-2 दिन से आपने भोजन ही नहीं किया ना, किसी तरह मैनेज कर रहे थे, अब पत्नी को लगा अब भोजन करके सो जाए, तो आपको उठाते हैं, तो आप उठ ही नहीं रहे हो, तो पत्नी को समझ में आ जाता है बहुत थके हैं, थोड़ा सोने दीजिएगा। 1 घंटे का फिर आते, फिर उठाते हैं, फिर गहरी नींद पर, तो पत्नी को लगता है कुछ खा लें फिर भले सो जाए, तो जोर से उठा, उठो ना। तो आप एक आंख खोल के देखते हो और सामने उस महिला को देखते हो, और आपके मन में संकल्प आता है, इसको मैंने कहीं तो देखा है, आई हैव सीन हर समवेयर। ऐसे करके देखते हो, आपके वो कहते क्या हुआ, तो आपको याद ही नहीं था मैं कहां पर हूं, क्या कर रहा हूं, अभी दिन है या रात है, क्या कुछ याद नहीं आ रहा, ये महिला कौन है वो जो अवस्था। आप में से कितने लोगों ने इस अवस्था को कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में अनुभव किया, वो हाथ उठाए। वाह, डेल्टा स्लीप के तो आप अनुभवी है ना। उस गहरी नींद में आप सब कुछ भूल गए, मेरा नाम, मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, मेरे इतने क्वालिफिकेशन, मैं यहां गया था, वहां गया था, सब कुछ मैं भूल जाता हूं। और उस डेल्टा स्लीप में यू आर इनटू दैट एनर्जी कॉन्शियसनेस। आत्मा पर विश्वास करना या नहीं करना 10-15 साल वेट करिएगा, लेकिन कार आने तक हर दिन अब गहरी नींद में, वो डेल्टा में
आप सब कुछ भूल जाते हो वो है एनर्जी कॉन्शियसनेस, वो है आत्मिक स्मृति, रियल इंटेलिजेंस। अच्छा फ्रेंड्स बताइए, अगर नींद इतना सुंदर गिफ्ट है तो हमारी कविता बहन जी आपको सुबह 4 बजे क्यों उठाते हैं? फिर खर्राटे मार के सोते रहे ना 8-8:30 बजे तक। अब कविता बहन से पूछना, ओ बहन जी आप तो वाइस चेयरपर्सन बन गए हो, दिव्या दीदी से तो पूछ नहीं सकते, तो कविता बहन को पकड़ लीजिएगा। स्वामी भाई तो नींद के बारे में बोल रहे थे और 2-3 दिन से आप सुबह 4 बजे उठा रहे हमको। स्वामी भाई का सेशन सुनिए, अगर नींद इतना सुंदर गिफ्ट है तो कविता बहन आपको 4 बजे क्यों उठाकर यहां पर लेकर आते बताइए? क्योंकि नींद से हमारे शरीर और मन को विश्राम मिलता है, लेकिन नींद से हमारे संस्कार चेंज नहीं होते हैं। मुझे कुछ कारणवश आप पर गुस्सा आ गया तो मैं गुस्सा कर देता हूं और फिर मैं भोजन करके सो जाता हूं। जब मैं सुबह उठता हूं तो आप मेरे सामने आते हो, उस समय गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि शरीर और मन विश्राम हो गया, लेकिन स्वामी भाई का क्रोध का संस्कार चेंज नहीं होगा। क्रोध का संस्कार को अगर चेंज करना है, सुरक्षा का संस्कार बिठाना है, कितना भी आप धूप में टोपी पहन के चल लो, चलो एक प्रोग्राम हो जाता है, आपके सुंदर सुंदर फोटोग्राफ आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है, मैं भी चला आपके साथ टोपी पहनकर, लेकिन अगर आपको लगता है वो सुरक्षा संकल्प यात्रा से जितने लोग ने किया उनका संस्कार चेंज होगा, साइंटिफिकली लॉजिकली मैथमेटिकली रैशनली द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ यात्रा करने से नहीं होता है। आपको क्या लगता है स्वामी भाई के, गिरीश भाई के प्रवचन से हमारे संस्कार चेंज होंगे? द आंसर इज नो, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वो संस्कार को चेंज होने के लिए आपको बीटा और डेल्टा के बारे में तो पता है, उसके बीच की एक अवस्था में आना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्फा स्टेट। जब तक आपने अपने मन को उस अल्फा स्टेट पर नहीं लेकर आए, हमारे संस्कार चेंज नहीं होंगे, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। इससे हमारी बहनें कहती है, यहां का 3 दिन का शिविर करने के बाद आप सेंटर जाइए, वहां 1 हफ्ते का राजयोग कोर्स करिएगा। ये अल्फा लेवल का भी आपने अनुभव किया होगा। सपोज आपको राइट 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, तो आप अलार्म रखते हो और जैसे अलार्म बजता है तो क्या होता है, आपके पुराने संस्कार उभर जाते हैं। टक, 10 मिनट के लिए सोता हूं, 10 मिनट के लिए सोता हूं। कितनों के पास ये 10 मिनट वाला संस्कार है, मैं किसी से हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि सभी के संस्कार है। और वो 10 मिनट जो है ना, आपको अति इंद्रिय आनंद देता है। ऐसी अवस्था जहां पर आप सोए भी नहीं है, जागे भी नहीं है, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अल्फा स्टेट। और उस अल्फा स्टेट में मेडिकल साइंस और रिसर्च क्या कहता है पता है, आपका मन उस अल्फा लेवल में एक छोटे से बच्चे की तरह हो जाता है। कल गिरीश भाई को मैं सुन रहा था, एक छोटा बच्चा दिन में कितनी बार मुस्कुराता है? 300 बार। आने वाले समय पर ऐसा कार बन जाएगा, जब तक आप मुस्कुराओगे ना वो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो अपने साथ एक बैकअप प्लान छोटू बच्चों को साथ में रखना, उसको सामने दिखा देना कैमरा के सामने, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, राइट? यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि वो सेंसर चेक करेगा, नींद आती है तो सेंसर चेक कर लेता है, राइट? और उस अल्फा लेवल में आपका और मेरा मन एक छोटे से बच्चे की तरह। आप यहां बैठे ना, आप सभी अनुभवी बैठे हैं, चाहे बहने चाहे भाई हैं, वर्षों का आपका ट्रांसपोर्ट का, वर्षों का आपका यात्रा का अनुभव होगा, लेकिन यहां पे जब स्वामी भाई गिरीश भाई बोलते, आप वहां पर आपके बिलीफ सिस्टम, आपके विजडम, आपके अनुभव से जो हम बोल रहे हैं, या तो आप स्वीकार करते नहीं तो आप रिजेक्ट करते। इसे मुझे इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम इंटेलिजेंस, ड्राइवरलेस कार ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी बुद्धि को स्वीकार करने के लिए। लेकिन अल्फा लेवल में आपका मन एक छोटे से बच्चे की तरह। और अल्फा लेवल कब आता है? जब आपका मन रिलैक्स होता है। ये जागृत और नींद के बीच की अवस्था, इसलिए आप देखें जब मेडिटेशन करते हैं तो रेड लाइट करते हैं, लाइट म्यूजिक बजाते हैं। मेडिटेशन का ये महत्व है। तो आज भी मैं आपको अंत में मेडिटेशन कराऊंगा। कौन कौन स्वस्थ रहना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। वाव। और स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने सुना होगा हिंदी में कहावत है, जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहे थे, तो सारे कैडेट्स बैठे थे, तो मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है और कमांडेंट बहुत खुश हुए राइट आंसर तो शरीर रूपी जहाज का भी आपका ध्यान रखना बहुत जरूरत है, इसे व्यायाम करना बहुत जरूरत है। तो अब हम धीरे से आपको गिफ्ट देते हैं, एकाग्रता का गिफ्ट, और व्यायाम के द्वारा हम देखेंगे राइट। दोनों हाथ ऐसे रखें, धीरे से हाथ को जोड़ें, फिर दोनों हाथ जोड़ें, एक दूसरे को देखें और फिर पूछें मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि इंजन चालू होगी कि नहीं होगी, पूछ लो भाई, नहीं तो बच्चे को लेकर घूमना पड़ेगा। देखो मुस्कुरा भाई, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अब चाहो या नहीं चाहो, कौन कौन चाहते हैं 15-20 वर्ष के बाद आपकी इंजन स्टार्ट हो, जरा हाथ उठाए। हाँ थोड़ा मुस्कुरा के एक दूसरे को देख लो भाई, थोड़ा प्रैक्टिस आज से करो, नो ऑप्शंस अवेलेबल, करेक्ट। तो आज मैं आपको गिफ्ट दूंगा आपके बच्चों को और पोतरे पोत्रियों के लिए राइट, और वो है एकाग्रता का तोहफा। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर की कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी और उनका फेवरेट एक लाइन का गीत था, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, फिर पढ़ाती फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। हमको मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में 1 dozen से ज्यादा बार गीत गाया, तो हमने खड़े होकर पूछा मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। मैडम लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, मुस्कुराते हुए कहती है स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाए नहीं। उस दिन हम घर में गए, घर में हमने पापा से पूछा पापा व्हाट कॉन्सेंट्रेशन। पापा का सुंदर चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बड़े लोग मानते किधर है कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकस, फोकस। हमने कहा फोकस मतलब ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामीनाथन। हमने कहा ध्यान मतलब कन्वर्जेंस, हमने कहा कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता, हमने कहा एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। हमने कहा पापा पहले हम वही पूछ रहे थे, आपने जो जवाब दिया ना उसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। दूसरा दिन हम क्लास में गए तो मैडम आई, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हमने कहा गुड मॉर्निंग टीचर, वेर इज स्वामीनाथन। तो हम बैठे थे, स्वामी कल कितना सुंदर प्रश्न पूछा, तो आज हम आपको जवाब देते हैं। हम विद्यार्थियों में बड़ी उत्सुकता थी कि आज मैडम अपने संगीत का भाव समझाएंगे। मैडम ने कहानी सुनाई, महाभारत की कहानी, पांडव और कौरव, गुरु का नाम क्या था, गुरु द्रोणाचार्य। एकाग्रता सिखा रहे थे, लक्ष्य पंछी की आंख, धनुष बाण। तो सब लोग टारगेट देखने लगे, गुरुजी ने कहा वेट, क्या दिखाई दे रहा है। सारे पांडव और कौरव में एक महारथी था जिसका नाम था अर्जुन, बाकी सबने कहा हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, टहनियां दिखाई दे रही, पत्ते दिखाई दे रहे, पंछी दिखाई दे रही, आंख दिखाई दे रही। सिर्फ अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने करेक्ट आंसर, और जैसे ही धनुष बाण करने लगे गुरुजी ने कहा वेट, क्योंकि आपको थ्योरी समझ में आ गया, आपको सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाएगा। टीचर ने कहानियां बंद किया और मुझको पूछा स्वामी एकाग्रता क्या समझ में आया। मैंने कहा हां जी क्या समझ में आया। मैं कहा मैडम अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दी। बोला वेरी गुड। फिर घंटी बजी और हमारा टिफिन टाइम था, और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे बड़े प्यार से, बहुत अच्छी प्रकृति के सानिध्य में वाला स्कूल था। टिफिन खाते खाते अचानक हमारी नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ी, तो हमने थोड़ा ध्यान से देखा तो सारा पेड़ दिख रहा है, फिर हमने थोड़ा आंखें मल लिए, फिर उस पेड़ के पास जाके खड़े हुए जहां पंछी बैठी थी, फिर देखा तो सारा पेड़ दिख रहा है। हम दौड़ते दौड़ते स्टाफ रूम में आए, मैडम को कहा मैडम कैन यू प्लीज कम आउट फॉर अ मिनट, व्हाई आई शुड कम आउट। मैं कहा मैडम मेरे को ना एक डाउट है, तुम ना मुझे इतना डाउट से परेशान करता है स्वामीनाथन। मैं कहा आ जाइए ना, अच्छी मैडम थी मेरे पीछे पीछे चली। मैंने उनको पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। मैं कहा मैडम क्या दिखाई दे रहा। आया उनको गुस्सा, स्वामीनाथन सच अ स्टूपिड क्वेश्चन, अरे पेड़ के सामने खड़े तो बिल्डिंग दिखाई देगी क्या, पेड़ दिख रहा है। मैं कहा मैडम आपको ट्रंक दिख रहा है। बोले यस, है ना, टहनियां दिख रही, यस पत्ते दिख रहे, स्वामी मुझे सारा पेड़ दिख रहा है। मैं कहा मैडम मुझे भी सारा पेड़ दिख रहा है। वेरी गुड, मतलब तेरी आंखें एकदम ठीक है। मैं कह रही अभी अभी आपने एकाग्रता की कहानी सुनाई ना, अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दी, अब हमको तो सारा पेड़ दिख रहा है, मतलब हम अर्जुन बने ही नहीं, एकाग्रता क्या समझ में नहीं आया। तो जैसे ही कहा तो मैडम ने भी घूर के देखा, और बोलती है स्वामी मुझे भी सारा पेड़ दिख रहा है और मेरे नजदीक आती मेरा पीठ थपथपाती है. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन स्वामीनाथन. आपने इस पर चिंतन करना और मुझसे पहले अगर आपको जवाब मिलेगा ना तो मुझे आकर जरूर बताना. उस दिन मुझे समझ में एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है. एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो कहता मुझे सब कुछ पता है. एक अच्छा शिक्षक वो होता है हु इज ओपन फॉर लर्निंग. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है हमको सीखना है समझना है. राइट जब हम घर में गए तो पापा भी अपना अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार थे. और हमारे जमाने का अस्त्र शस्त्र वो अमर चित्र कथा होता था. कॉमिक किताब होती थी. पापा ने अमर चित्र कथा पकड़ा दिया. हमने देखा फ्रंट पेज में स्वामी विवेकानंद का फोटो और पापा ने कहा स्वामी विवेकानंद इज वेरी वेरी फेमस फॉर हिज पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. और एक टेक्नोलॉजी का वो अभ्यास करते थे राजयोग. आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा. मैंने किताब पढ़ी ये तो समझ में आया कि स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी है. लेकिन राजयोग क्या है समझ में नहीं आया. अर्जुन को सिर्फ पंछी के आंख क्यों दिखते वो भी समझ में नहीं आया. और आज से 30 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी में यहां पर आया इतना अच्छा लगा कि द फैकल्टी ऑफ द ब्रह्मा कुमारी ऑल्सो टीच एन एंशियंट विजडम ऑफ राजयोग का. भगवद गीता में इसका जिक्र है. उस दिन महसूस किया कि विद्यार्थी होकर तो मुझे कभी समझ में नहीं आया लेकिन आज मैं शिक्षक हूं मुझे बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए. राइट और आज भी मैं अपने पीएचडी स्टूडेंट्स का अगर इंटरव्यू लेता हूं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं मैं उनसे व्हाट्स कॉन्सेंट्रेशन. एमटेक में कितने मार्क्स मिले एमफिल में कितने मार्क्स मिले एमएससी में पूछता ही नहीं हूं. जो भी आते हैं मैं उनसे यही पूछता हूं व्हाट्स कॉन्सेंट्रेशन. और एक विद्यार्थी अगर मुझे लगता है उसका डोमेन बहुत अच्छा है मेहनती है तो मैं कहता हूं एक साल का समय देता हूं बच्चे पूरा चैट जीपीटी विकिपीडिया गूगल इंटरनेट सर्च करिए. एक साल में जब भी आपको एकाग्रता का डेफिनेशन परिभाषा मिलेगा आप मेरे पास आइए उस वक्त मैं आपको स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करूंगा. राइट और एक खुशनुमा मेरा दिन वो था जब मैंने अपने उस टीचर को फोन किया. मैंने कहा मैडम आपने मुझे पहचाना. यस स्वामीनाथन. मैंने कहा आपको पूछा था एकाग्रता क्या है. अर्जुन को सिर्फ पंछी के आंख कैसे दिखाई देते. बोला बताओ बताओ. मैं कहा ऐसे नहीं बताऊंगा. जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने मुझे सिखाया वहां पर आपको आना पड़ेगा. मैडम रिटायर हो गई थी अपने युगल के साथ आई और ऐसे ही डायमंड हॉल में मैं यहां बैठा था और मैडम सामने बैठी थी इसी सीट पर. और जब सेशन खत्म हुआ तो मैं धीरे से सीढ़ी से नीचे उतरा और उनके चरण को स्पर्श किया. मैडम मुझे बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाती है और सारे ऑडियंस को कहती है ये मेरा विद्यार्थी है ये मेरा विद्यार्थी है. उस दिन समझ में आया कि गुरु को गुरुदक्षिणा कब मिलता है जब उसका विद्यार्थी उससे आगे बढ़ता है. राइट तो आज मैं एक गिफ्ट आपको देना चाहूंगा. व्हाट्स कॉन्सेंट्रेशन. 3 प्रश्न. एकाग्रता क्या है. दूसरा प्रश्न अर्जुन को सिर्फ पंछी के आंख कैसे दिखाई देती है. और तीसरा आपका जवाब इतना सहज होना चाहिए कि 5वीं कक्षा के बच्चों को भी एकाग्रता क्या है समझ में आए. और इसलिए ये जरूरत है एकाग्रता. सिर्फ पढ़ाई मेमोरी स्मरण शक्ति की बात नहीं है. सिर्फ अच्छे मार्क्स लेना और IIT में सफल होने की बात नहीं है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये एकाग्रता की शक्ति ही आने वाले समय पर गाड़ी को आगे बढ़ाएगी. और ऐसा प्रोटोटाइप ऑलरेडी बन गया है. राइट तो आज मैं आपको गिफ्ट देता हूं. छोटा सा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं. हाँ तो एक्सरसाइज क्या करना है. दोनों हाथ ऐसे रखें. बहुत खुशी से करना क्योंकि सारा विश्व आपको लाइव में देख रहा है. तो बच्चे पहुंचते शायद बोलेंगे पापा थोड़ा मुस्कुराते हुए आइए आइए बहुत अच्छा है क्योंकि आने वाले समय पर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा इंजन को स्टार्ट करेगा. ओके अब एक्सरसाइज क्या करना बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है आपको दोनों हाथ ऐसा रखना अभी नहीं रखना देख लेना. और नंबर्स को मैं काउंट करूंगा इंग्लिश में 1 2 3 4 5. जैसे ही आप 5 सुनेंगे आपको ताली बजाना है. द मोमेंट यू हियर 5 यू शुड क्लैप. जैसे ही आप 5 सुनेंगे आपको ताली बजाना. कितनों को समझ में आया वो हाथ उठाएं. ठीक है दोनों हाथ ऐसे रखें. मुझे बहुत ध्यान से देखना. हियर वी गो 1 2 3 4. अरे क्या करते आप लोग. बाप रे दिव्या दीदी तो कह रहे थे बड़े बुद्धिमान ऑडियंस बैठे. हमारी गाड़ी आगे कैसे चलेगी? आगे इंजन ठक बंद हो गया, 5 में चालू होना चाहिए, 4 में चालू हो गया, एक्सीडेंट, सुरक्षा। चलो प्लीज ना, भविष्य के ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा सा एकाग्रता तो बढ़ाओ ना। अब फिर से रखिए ध्यान से, इस बार पास होना। ओके, हियर वी गो, 1 2 3 4 6। अरे क्या करते हो आप लोग भाई, आपके पोतरे पोतरे यार टीवी में देख रहा आपको, दादा नानी प्लीज ना पास हो जाओ ना। एक काम करते, अपनी आंखें बंद करें, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज, फिर दोनों हाथ रखिए, अब पास होंगे, ठीक है? प्लीज पास हो जाना। हियर वी गो, 1 2 3 4 1। हेलो, भविष्य का चिंता करिए, गोल्डन जुबली में जाना है, ड्राइवरलेस कार, संकल्पों से गाड़ी चलने वाली है, प्लीज सुरक्षित पहुंचाइएगा। हियर वी गो, 1 2 3 1, 1 2 3 4 7। बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए, 1 2 5। अब भाई तालियां बजाओ, कुछ लोग ऐसे रखे, 5 5 5, तालियां बजाइए, 5 5 5 5 5, हाथ नीचे रखे। ओके, अब मैंने 1 2 5 बोला बहुत लोग मुस्कुराते हुए, ठीक क्या चलेगा? ठीक है, अच्छा बताइए, कौन से केस में आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कुछ लोग पास हो रहे थे, लेकिन मैं अगर कलेक्टिव की बात करूं, क्योंकि सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली, बहुत सारी गाड़ियां 10-15 वर्ष के बाद, और ट्रैफिक बढ़ने वाला है, सिर्फ आप सुधरने से कोई मतलब नहीं है, सामने वाले व्यक्ति को भी एकाग्रता सिखाना पड़ेगा। अब आप बताइए, दोनों केस में, एक समय आंखें खुली और एक में आंखें बंद, किस में आपकी कार्य कुशलता सफलता की ओर गया था, आंखें बंद करके कि आंखें खोल करके? आंखें बंद करके, करेक्ट। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछा, बच्चों एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बोला, सर हमारी टीचर कहती है प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मैं कहा, बच्चों अच्छा बताइए, मेडिटेशन करते वक्त, प्रेयर करते वक्त आंखें बंद करते हो कि आंखें खोलते हो? बोला, सर हमारी टीचर कहती है आंखें बंद करो, लेकिन हम एक आंख खोलते जरूर हैं। तो टीचर के आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। मैंने कहा ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने कहा, बच्चों बताइए एकाग्रता कब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है? बोला, सर जब हम पढ़ते हैं। मैंने कहा, पढ़ते वक्त आंखें बंद करके पढ़ते हो कि आंखें खोल करके पढ़ते हो? सर कैसा प्रश्न पूछते हैं, आंखें बंद करके कोई पढ़ाई की जाती क्या? मैंने कहा, पापा को एकाग्रता की जरूरत है क्या? बोला, हाँ जी। मैंने कहा, कब? बोला, जब वो कार चलाते हैं। कार चलाते वक्त आंखें बंद करके कार चलाते हैं या आंखें खोल करके? yes. मामा को एकाग्रता की जरूरत है? बोला, हाँ जी। मैंने कहा, कब? एक छोटी बच्ची हाथ उठाती है। बोला, सर जब मामा भोजन बनाती है एकाग्रता की बहुत जरूरत है सर, कभी नमक डालना भूल जाती है, कभी बहुत नमक डाल देती है। बड़ी प्यारी मम्मा है, आंखें खोल करके भोजन बनाते। अब देखिए, हमारी एकाग्रता सफल तब होता है जब हम आंखें बंद करते, सारा कर्म करना आंखें खोल करके। ये तो 25 वर्ष पहले की कहानी मैं बता रहा हूं, आने वाले समय पर, राइट? आप जब गाड़ी में, ड्राइवरलेस कार में बैठे हो, अगर आपने सही संकल्प नहीं दिया तो चारों तरफ हलचल होते हुए भी, इतनी ट्रैफिक होते हुए भी आपकी आंखें खुली है, सब कुछ आप देख रहे हो, लेकिन आपका मन कितना शांत और स्थिर, राइट? और मैंने इसलिए भी आपको एक्सरसाइज कराया, क्योंकि जब आप देखते हैं, जब आप मुझे देख रहे थे, चार में मैंने ताली बजाई तो आपने भी ताली बजाई, मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दृश्य। इसे घर जाकर बच्चों को मत बोलना है कि मेडिटेशन करो, नहीं, आप गलत फॉर्मूला पकड़ रहे हो। आजकल युवा बच्चे कब सोते कब जागते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक दिन बच्चा सोने के लिए 4:30 बजे उठता है, वॉशरूम जाने का मन करता है, जैसे ही ड्राइंग हॉल में जाता है तो देखता है कि लाइट जली हुई है, वो कहता है किसने लाइट बंद नहीं किया, और जैसे ही वो हॉल में जाता है वो देखते हैं पापा बैठे हुए हैं, लाइट म्यूजिक बज रहा है और पापा ध्यान की मुद्रा में, आंखें खुली, पूरी आंखें खुली नहीं, पूरी आंखें बंद भी नहीं, अल्फा लेवल पर, मालूम है बेटा आ रहा है, वॉशरूम जा रहा है, सब कुछ,
एंड पापा एकाग्र. चिल्ड्रन सी, चिल्ड्रन डू. बच्चे देखते हैं, बच्चे करते हैं. मैं आज से बहुत वर्ष पहले जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग फैकल्टी था, तो जब मैं क्लास में आता था, मुंबई के बच्चे इतने हाइपर एक्टिव. मैं बहुत प्यार से कहता है, सेटल डाउन, साइलेंस, कोई सुनता नहीं. तो मैं क्या करता था, अपना मोबाइल उठाता था, लाइट म्यूजिक बजाता था और 2-3 मिनट एकदम आंखें बंद, लाइट म्यूजिक. 2-3 मिनट के बाद मैं आंखें खोलता था, सारे बच्चे मस्ती कर रहे, कोई नहीं सुनता है. बस एक एक बच्चे को इतना प्यार से, शांति से देखता था उनको. आत्मा का स्वधर्म, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप. फिर कुछ गर्ल्स बोलते, सर देख रहे, सर देख रहे, बैठने लगते. फिर बॉयज को भी बोलते थे. पहला दिन मुझे 15-20 मिनट लगते थे, ओके थैंक यू. और जो मैं क्लास लेता हूं इतना प्यार से, कभी बच्चों पर गुस्सा नहीं करना, नेवर. और फिर 2-3 महीने के बाद ऐसा संस्कार बच्चे का बन जाता है, जैसे ही मैं क्लास में आता हूं सभी बच्चे साइलेंट बैठे. फिर एक विद्यार्थी खड़े होकर कहता, सर आपका म्यूजिक सुन सुनकर हम बोर हो गए सर, हमने आपके लिए एक नया म्यूजिक लेकर आए, इस पर आज मेडिटेशन करते. मैंने कहा प्लीज प्ले. ये मुंबई के बच्चे हैं, जो सुपर हाइपर एक्टिव बच्चे. वो बच्चे दृश्य देखना चाहिए, साइलेंस, स्टेबिलिटी, स्थिरता. तो आपने एक्सरसाइज तो किया, आपको संदेश भी मिल गया, लेकिन एकाग्रता क्या है? अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख कैसे दिखाई देती है? 5वीं कक्षा के बच्चों को कैसे समझ में आएगा? जैसे एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो बहुत एटॉमिक पावर स्टेशंस में मुझे जाने का सौभाग्य मिला. मेरे ख्याल से भारत के सभी एटॉमिक पावर स्टेशंस में मैं गया हूं. बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन. तो जितने भी मैं एटॉमिक साइंटिस्ट से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या आज तक आपने किसी एटम को देखा है क्या? द आंसर इज नो. अणु, स्थूल अणु को नहीं देख सकते, आत्मा को कैसे देखेंगे? लेकिन एटम के अंदर जो शक्ति है, सुपर शक्ति. एटम का 3 वो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. उसी तरह आत्मा के 3 फैकल्टी है, मन, बुद्धि, संस्कार. तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना. तो एकाग्रता क्या है? ये गिफ्ट आप सीख कर बच्चों को जरूर समझाइए. सीधे बैठे सभी, या सभी मेरे साथ बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है, जहां मैं आत्मा चाहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं. ठीक है, अभी इंग्लिश में बोलते हैं, हमारी इंग्लिश भी सुधर जाएगी. सभी बोलिए, व्हेन, जोर से बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर एंड इट स्टेज बट द सोल डिसाइड्स, इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. अब इतनी दूर हम दक्षिण भारत केरला से आए हैं, तो खाली हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, आपको थोड़ा मलयालम सिखाकर जाएंगे. इसे सभी मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम, बोलिए जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम उर्मिच प्रवर्तिच टिंडंगल. क्या हुआ? पता, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल टूरिज्म के डेलीगेट क्या सोच रहे हैं? अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, ये तो क्या क्या सीखना पड़ता. हेलो, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है. आत्मा कोई भी जन्म, कहीं पर भी जन्म ले सकती है. अभी यहां बैठकर बहुत खुशी से अगर हम मलयालम बोलेंगे, तो कोई ना कोई जन्म केरला में आप एक अच्छे परिवार में टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे. गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा. सारा खेल ऑटोमोड जीपीएस पे काम करता है. अब उसी परिवार में क्यों जन्म लिए? इसी से मेरी शादी क्यों हुई? ऐसे ही हो गई क्या? विज्ञान है ये, और विज्ञान को उस विज्ञान को समझने के लिए अध्यात्म जरूरत है, राइट? इसे बहुत खुशी से मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम उर्मिच. मुंबई के विद्यार्थियों को मैं मलयालम सिखा रहा था, एक ने खड़े होकर कहा, सर अगला जन्म किसने देखा? सर मैं कहा, अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म की बात करते हैं. सर आप इस जन्म पे ध्यान दीजिएगा. मैं कहा, बच्चों अगर अभी बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे, तो इस जन्म में
इस गर्मी के छुट्टी में आपके माता पिता आपको केरला घुमाने के लिए लेके जाएंगे, नहीं तो पूरा गर्मी का छुट्टी मुंबई का धूल और ट्रैफिक खाते रहना। बोलो क्या विचार है? सर हम बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे सर। तो बोलिए, एंडे मनसुम बुद्धियुम उर्मिच प्रवर्ति चिट्टंडंगल। आप लोग केरला जरूर आओगे। सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं, तो कितना खुशी से बोला, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन मलयालम खत्म नहीं, आगे बोलिए, अदने एकाग्रता इन परियुम। अरे भाई फुल स्टॉप लगा रहा था, आप लोग भी कमाल की ऑडियंस है। भविष्य के कार कितने सौभाग्यशाली जो आप जैसे है ना कस्टमर्स और पैसेंजर्स मिल रहे हैं। वेरी गुड। अब मैं ट्रैफिक की बात में बात कहूं तो मन इज एक्सेलरेटर, बुद्धि इज ब्रेक, संस्कार इज क्लच, ABC। मन इज ऑडियो, बुद्धि इज वीडियो। पांचवी कक्षा के बच्चों कैसे समझ में आएगा? मन ऑडियो है, बुद्धि वीडियो है। इसे छोटा बच्चा जब LKG में जाता है ना, टीचर उसको पढ़ाती है, ए फॉर एप्पल। बाबा तीन दिन से सिखा 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 कर हमारे फैकल्टी मेंबर थक गए हैं, और ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग के डेलीगेट्स तीसरा दिन ए फॉर एप्पल। कौन कौन फैकल्टी ने आपको सिखाया? तो आत्मा बोलना चाहिए ना, एप्पल को कहां से उठा के लिखा है आप लोग? ए फॉर आत्मा बोलना चाहिए था ना। हाँ तभी एप्पल मत बोलिएगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आत्मा बोलिए। ए फॉर, वेरी गुड। बी फॉर बैट बॉल मत बोलिएगा, बी फॉर, वाह पास हो गए बाबा, सबका फोल्डर ओपन हो रहा बाबा। सी फॉर कैट नहीं बोलना, सी फॉर कनेक्शन। ए फॉर आत्मा एक्सलेटर, बी फॉर बाबा ब्रेक, बुद्धि दिव्य बनाता है, एंड सी इज क्लच। जब कनेक्ट होंगे आपके वो दिव्य संस्कार चेंज होंगे, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट, एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच। इसे जब छोटा बच्चा LKG में जाता है, टीचर जैसे ही कहती है ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में आती है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है एप्पल। फिर मैडम क्या करती है, एक एक्सरसाइज बुक लेते, दो कैपिटल ए लिख कर देती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल दो पेज ए लिख कर आना, और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए ए ए। इसे माताओं बहनों की इतनी अच्छी मेमोरी है, दो बच्चे हैं तो दो बार तो आपका रिवीजन हो गया होगा, इसे ए फॉर एप्पल अपने आप अपलोड हो गया। बार बार वो करना, नए कर्म करना, इस न्यू संस्कार, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं ब्रेन में, राइट? अर्जुन से पूछा कि क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने कहा मुझे पंछी की आंख दिखाई देती है। इसका जवाब ये है, अगर आप एक पेड़ के सामने खड़े होंगे तो आप 100% पूरा पेड़ देखेंगे, लेकिन अर्जुन कहता है गुरुजी मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही, उसका रहस्य क्या है? अर्जुन वॉज नॉट स्पीकिंग अबाउट विजिबल आईज, इन नैनों की बात ही नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे मन और बुद्धि के नैनों की बात। अरे पेड़ के सामने खड़े होंगे तो सारा पेड़ दिखाई देगा ना, लेकिन जब वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही है, मन और बुद्धि के नैनों की बात कर रहे हैं। जैसे आप कैमरा लीजिएगा और मुझे उस पंछी का आंख का फोटो खींचना है, तो मैं धरती पर खड़ा हूं और उसको जूम करूं, यहीं बैठ के मैं जूम कर सकता हूं, पंछी की आंख बाकी चीज ब्लर कर सकता हूं, फिर जैसे ही स्विच ऑन किया वो इमेज गैलरी में। जब एक यंत्र कर सकता है तो क्या आप और हम नहीं कर सकते क्या? टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं अगर कहता हूं सुबह सुबह का सूर्योदय, बताइए सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? लाल रंग का। तो यहां बैठकर मैं कितना समय उस सूर्योदय को देख सकता हूं मन बुद्धि से, अब यहां कोई सूर्योदय थोड़ी ना है, कितना समय मैं मन बुद्धि से उस सूर्योदय को देख सकता हूं, दैट्स माई पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और मेडिटेशन इज एन एक्सरसाइज ऑफ मन एंड बुद्धि। फिर एक संकल्प करिएगा, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और फिर मन बुद्धि से देखिए वो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। संजय भाई बायरटा में बता रहे थे ना, कि स्वामी भाई का एक सौभाग्य रहा विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि में जाने का, सियाचिन, भारत पाकिस्तान चाइना के संगम पर, -53 to -83 degrees centigrade. ये शरीर स्वस्थ रहने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरत है, लेकिन वहां सूर्य देख ही नहीं सकते, तो क्या उन सियाचिन कमांडोस को सूर्य प्रकाश की जरूरत नहीं है क्या? जरूरत है. तो क्या करना होगा? मन बुद्धि के व्यायाम को सिखाने के लिए हम सियाचिन गए थे. वो बहुत कभी कभी सूर्य का ग्लेयर उस बर्फीले पहाड़ पर आता है, वो हमेशा काले रंग का गॉगल्स पहनना चाहिए. अगर उन्होंने गॉगल्स निकाला और सूर्य के ग्लेयर को पकड़ लिया, जिंदगी भर उनका आंख फ्यूज हो जाएगा, सूरदास बन जाएंगे वो. विटामिन डी चाहिए तो मन बुद्धि के नैनो से. मैं जब अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को कोविड के समय पर, क्योंकि कोविड में आंतरिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए विटामिन डी जरूरत है, क्वारंटाइन में है, तो मैंने कहा आप अपने कमरे में बैठिए, डरिएगा नहीं, डरना नहीं है. कोविड में जितने लोगों ने शरीर छोड़ा, एक फैक्टर कॉमन था, डर. से हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, जो डर गया, मत बोलिए और मत डराइए, मुझे पता है डर. मैं डरना नहीं है. और कितने कोविड भाई बहनों को मैं जूम पर मिलता था, बात करता था, टेक्नोलॉजी को यूज करते थे. तो कभी ये नहीं कहना टेक्नोलॉजी खराब है, नो, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज सुपर वे. तो बोला सर क्या करें? तो मैंने कहा मन बुद्धि से सूर्य को देखो, सूर्य प्रकाश को आते हुए देखो. एक ने कहा सर वैसे तो आप शिक्षक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा उदाहरण बताते हो हमको लगता है आपका नट बोल्ट कभी कभी लूज हो जाता है. मन बुद्धि से देखे सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी जनरेट होता है. मैंने कहा ओके लेट्स एक्सपेरिमेंट. ये बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है. सभी सीधे बैठे, आंखें बंद करें. अब मन और बुद्धि से यहां बैठकर एक फ्रेश नींबू को देखिए, लेमन, तरो ताजगा ताजी नींबू. नींबू को धीरे अपने हाथ में लीजिए, उसको स्पर्श करिए, धीरे से नींबू को कट करिए. एक ग्लास पानी में नींबू पानी को निचोड़िए, नींबू को निचोड़िए उस पानी में. कीप ऑन स्क्वीजिंग द लेमन इनटू द ग्लास ऑफ वाटर. मन बुद्धि से दृश्य देखते रहिएगा, नींबू को एक ग्लास पानी में आप निचोड़ रहे हैं. ओम शांति. धीरे से आंखें खोलें. कौन कौन मन बुद्धि से नींबू को देखे वो जरा हाथ उठाएं. वाव, कितनों ने हाथ नीचे रखे, कितनों ने नींबू को कट किया वो हाथ उठाएं, कितनों ने नींबू को ग्लास पानी में निचोड़ा वो हाथ उठाएं. सभी नीचे हाथ रखें. जब आप ये कर रहे थे तो कितने के मुख में वो लार या सलाइवा आया? हम यहां से बैठ के देख रहे थे सब लोग. तो नींबू के पास गए थे क्या? नहीं. तो हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आता कि आत्मा कौन सा संकल्प कर रही है, कौन सा चित्र बना रही है. और जैसे आत्मा ने डिसाइड किया कि मुझे नींबू का दृश्य बनाना है, ब्रेन स्टार्टेड रिलीजिंग विटामिन सी, स्टार्टेड रिलीजिंग. इसे सारा दिन पता नहीं क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं. आप चित्र बनाते रहिएगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे. इसलिए मेडिटेशन इज सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दृश्य. चलिए लास्ट 4-5 मिनट हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर निकलेंगे. और ये जो यात्रा है मन और बुद्धि के द्वारा, ठीक है, उसके पहले हम छोटा सा एक एक्सरसाइज कर लें ताकि आप सभी फ्रेश हो जाएं. धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और धीरे से दोनों हाथ को स्पर्श करिए, बिल्कुल आवाज नहीं. यस, जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे ही करिएगा, थोड़ा मुस्कुराते हुए करिए. वेरी स्वीट, वाओ, ठीक है. अब ये एक्सरसाइज हमने फिजिकल एक्सरसाइज किया, अब इसमें भावनाओं को जोड़िएगा. क्या करना मैं बताता हूं, पहले मुझे देख लेना फिर आप करना. ये दोनों हाथ जो है ना, ये हमारा मन और बुद्धि है. धीरे से मन बुद्धि को ऊपर उठाइए और मन बुद्धि से ज्ञान गुण और शक्तियों के सूर्य और परम ज्योति को स्पर्श करिए. परमात्मा ज्ञान गुण और शक्तियों का स्रोत है. महसूस करिए परमात्मा से ज्ञान गुण और शक्तियों के वाइब्रेशन धीरे धीरे मुझ पर आ रहे हैं.
रिलैक्स, हाथ को नीचे रखें। अब ये जो आपने एक्सरसाइज किया ना, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। अगर पानी बहता रहेगा ना तो उसमें शक्ति नहीं होती है। पानी को अगर शक्तिशाली बनाना है तो पानी को हाइट देना पड़ेगा, फिर पानी को छोड़ना पड़ेगा। तो पानी इतनी तेजी से आता है, टर्बाइन रोटेट करता है और फिर ऊर्जा बनता है। मैं कुछ समय पहले उत्तराखंड में सेवा के लिए गया था, तो वहां पर टहरी डैम है, अपर टहरी लोअर टहरी। वहां के इंजीनियर्स मुझे बता रहे थे, स्वामी भाई अगर हमने दोनों अपर टहरी लोअर टहरी का डैम का गेट एक साथ खोला तो पानी इतनी तेजी से नीचे आएगा, टर्बाइन रोटेट करता है और उसका जो आउटपुट है इलेक्ट्रिसिटी 2400 मेगावाट प्रति, अब आप बताइए प्रति साल, प्रति महीना, प्रति हफ्ता, प्रति दिन, कितना? प्रति सेकंड। पानी गिरा 2400 मेगावाट। विज्ञान हमें अध्यात्म सिखा रहा है। मन को आप इधर ही बहते रहने दो, उलझते रहो, कभी हम सशक्त नहीं बनेंगे। मन और बुद्धि को ऊपर लेकर जाना। इसे कभी भी आपको टाइम मिलता है ना सेशन के बीच में या भोजन करने के पहले, इस हॉल के जस्ट पीछे हमारा एक 3S का एक्सिबिशन है, स्पीड सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी। कितनों ने एक्सिबिशन देखा है वो हाथ उठाएं, थैंक यू। कितनों ने नहीं देखा है मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं, कब देखेंगे? क्योंकि वहां पर जब आप जाएंगे ना तो जो स्वामी भाई थ्योरी बता रहे हैं वह मॉडल्स के द्वारा बताया जाएगा। सुरक्षा सिर्फ सड़क सुरक्षा नहीं है, प्रकृति की सुरक्षा भी। बहुत सुंदर, और भाई बहनों ने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। और वहां पर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे एक्टिविटीज के द्वारा, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार एक्टिविटी के द्वारा बताया जाएगा। तो आप में से अगले दो दिन में कौन कौन वो एक्सिबिशन देखेंगे वो हाथ उठाएं। कितनों ने मेहनत किया ना बनाने में, सुबह से उनका ड्यूटी लगा हुआ है। और जो भी सेवाधारी सेवा कर रहे ना उनको कोई पेमेंट भी नहीं दी जाती है, उन्होंने अपने कार्य व्यवहार घर गृहस्थ को रखकर आपकी सेवा के लिए पहुंचे और सुबह से भगवान से बोल रहे हैं ये डेलीगेट्स आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। तो चले जाओ ना, एक बार देख लो ना, अच्छा लगेगा। आप जब जाते ना तो उनको लगता है उनका समय सार्थक हो रहा है। ठीक है, जाएंगे? कौन कौन जाएंगे वो हाथ उठाए? वाह, वेरी स्वीट। तो पानी को हाइट देना फिर छोड़ना। तो वहां सोलर के बारे में भी है, विंड टर्बाइन के बारे में, बहुत अच्छा है विज्ञान। और उसके लिए ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग की तरफ से हम साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट विंग का भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने उसका साइंटिफिक वर्जन उन्होंने बना के दिया। चलिए तो काम करते हैं, हम मन बुद्धि से अगला 4-5 मिनट की यात्रा करेंगे। जो मैं बोलूंगा वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आपकी बुद्धि चित्र बनाएगी, और अगले 3-4 मिनट आप मन बुद्धि से आप यात्रा कर सकते हो। तो आपकी एकाग्रता सुपर्ब है। और जब आप इसका प्रयास और प्रयोग करते हैं, जब आप घर जाएंगे, आप बच्चों को जब कहेंगे तो उनकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि आप खुद उसका अनुभव कर रहे हो। फिर पढ़ाई में कैसे यूज करना है, अगली बार आप अपने शहर में बुलाइए। स्मरण शक्ति फॉर्मूलाज को कैसे याद करना है वो तो अगले कभी हम जरूर जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए। और खास कर जैसे मलयालम बोलने में कठिन हो रहा था, पहली बार गाड़ी चला रहे तो हाथ नहीं बैठता था, गाड़ी इधर उधर भागती थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो गया है। उसी तरह मन बुद्धि को आत्मा रूपी राजा जहां चाहे ले जाने के लिए भाई बहने आपको गाइड कर रहे हैं। जैसे पहली बार ट्रेनिंग स्कूल में जाते ना, ड्राइविंग स्कूल में, तो सामने भी उसके पास भी एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच होता है तो सिखाता रहता है। कुछ समय के बाद आप स्वतंत्र हो जाते हो, लेकिन संस्कार को चेंज होने के लिए करीब 90 दिन लगते हैं, क्योंकि एक नया हाईवे ब्रेन में बनने के लिए 90 दिन। तो आज से आप मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे हैं, 90 दिन तक अगर आप मुस्कुराते हुए रहेंगे, फिर जैसे गिरीश भाई कल बता रहे थे कोई गुस्सा भी करेगा ना तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि एक पाथवे बन गया है, एक हाईवे ब्रेन में बन गया है, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। रोड भी बनाने में टाइम लगता है ना, उसको साफ किया जाता है, फिर मिट्टी डाली जाती है, फिर उसमें वो सब डालते हैं, फिर तार लाते हैं, फिर वो रोलिंग मशीन को घुमाते हैं ना, टाइम लगता है रोड बनाने में। उसी तरह यहां पे भी रोड बनने में टाइम लगता है। ये 3 दिन के प्रोग्राम से हाईवे नहीं बनता है, शुरू हुआ है, इसको आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हुए 3-4 मिनट की एक सुंदर यात्रा। और तीन चार मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कहां कहां यात्रा की, ओके? तो आपके जवाब से मुझे पता चलेगा कि आपकी एकाग्रता कितनी सुपर्ब है, राइट? चलिए आराम से बैठिए, रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली, गहरी श्वास भरे और धीरे से श्वास को छोड़े, रिलैक्स। चलिए राज्यों के एक श्रेष्ठ राजपथ की एक यात्रा पर चलते हैं, और ये यात्रा मन और बुद्धि के द्वारा, मन ऑडियो, बुद्धि वीडियो। मन का काम संकल्प करना, बुद्धि का काम उसका चित्र बनाना। मन बुद्धि जब एक साथ जो आप चाहें उसके हिसाब से अगर आप चल सकते हैं, दैट्स कॉन्सेंट्रेशन। महसूस करिए मन बुद्धि से, क्या धीरे से अपने सीट पर खड़े हो रहे, कोई खड़ा नहीं होगा, मन बुद्धि से अपने स्थान पर खड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे इस डायमंड हॉल से आप बाहर निकल रहे हैं। भाई लोग भाई की तरफ, बहनें बहनों की तरफ, और जैसे ही आप डायमंड हॉल के बाहर जाते हैं, आपके लिए एक विशेष सफेद रंग का ड्राइवरलेस कार आपका इंतजार कर रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए कार अवेलेबल है, बस आपकी अपनी यात्रा है, इसलिए बहुत प्यार से इस यात्रा पर चलिए। आप धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, बैठते हैं, सिर्फ आप उस गाड़ी में बैठे हैं। इट्स अ ड्राइवरलेस व्हीकल, लेकिन ये वाहन आपके संकल्प से चलने वाली गाड़ी है, जो आने वाले समय का आविष्कार होने वाला है। आप बहुत प्यार से संकल्प करते हो कि मुझे अबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचना है। अब आप देख रहे हैं वो कार बहुत प्यार से चल रहा है अबू रोड स्टेशन की तरफ। आजू बाजू बहुत ट्रैफिक है, इन गाड़ी बहुत प्यार से सेंसर में करते हुए, आप मुस्कुराते हुए इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। रास्ते के बीच में गौ माता भी आपको देखकर मुस्कुरा रही है। थैंक गॉड बहुत ज्यादा बड़ा रोड है, इसे आप साइड से निकल पा रहे हैं और धीरे से अबू रोड रेलवे स्टेशन आप पहुंच गए हैं। आप उस कार से उतरते हो, प्लेटफॉर्म नंबर 1, यात्री कृपया ध्यान दे। और खुशी की बात है, भारत में भी ड्राइवरलेस ट्रेन भी स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे हैं आपके लिए विशेष एक ट्रेन आकर खड़ा है। आपने संकल्प किया, आपके सामने वो ट्रेन। अब धीरे से ट्रेन में प्रवेश कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और आप संकल्प दे रहे हैं। रोडवेज हो गया रेलवेज के द्वारा एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां प्रकृति बहुत सुंदर है, पांचों तत्व बहुत मीठे और मधुर। हे ट्रेन, मुझे ऐसा एक सुंदर जगह लेकर जाइए, और आप अपना स्पीड को इस तरह से मैनेज करना और ऐसा डेस्टिनेशन चुनना कि रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर मुझे ऐसा सुंदर प्रकृति और विशेष सुबह सुबह का सूर्योदय देखना चाहता हूं। आप उस ट्रेन के मालिक हैं। ट्रेन धीरे से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है। आप विंडो सीट में बैठकर बाहर के दृश्य को साक्षी होकर देख रहे हैं। आप सो रहे हैं गहरी नींद पर, सुबह एकदम सही वक्त 6:15 बजे ट्रेन आपको एक बहुत सुंदर लोकेशन पर पहुंचाती है। यात्री कृपया ध्यान दें, आप अपने मंजिल तक सुरक्षित पहुंच गए हैं। आप उस ट्रेन का बहुत दिल से मुस्कुराते हुए धन्यवाद देकर आप ट्रेन के बाहर निकलते हैं। जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सुंदर एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे सागर के तट पर आप चल रहे हैं। आपके चरण उस ठंडक को महसूस कर रहे हैं। उस सागर के तट पर आप बैठते हैं, ठंडी हवा आपको स्पर्श कर रही है और सामने पहाड़ी पर सुबह सुबह का सूर्योदय, रेड इन कलर। सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक, महसूस करिए वो सूर्य का प्रकाश, लाल किरणें धीरे धीरे आपके पास आकर आपको स्पर्श कर रही है। सूर्य का प्रकाश मेरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरत है, महसूस करिए मैं स्वस्थ हूं। मेरा शरीर का हर सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। अब स्व के अस्तित्व में टिकिए, मन बुद्धि को भ्रकुटी के बीच में लेकर आइए। ये शरीर बहुत सुंदर गाड़ी और मैं आत्मा अदृश्य चालक हूं। मन बुद्धि को भ्रकुटी के बीच में मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य ऊर्जा हूं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मन बुद्धि से अपने सत्य स्वरूप को देखिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। अब आगे की यात्रा, कोई साधन की जरूरत नहीं, मन और बुद्धि से 1 सेकेंड आप अपने घर के सामने पहुंच जाइए। आप भारत से कहीं से भी आए हैं, घर के सामने आपको घर स्पष्ट स्वरूप में दिखाई दे रहा है। धीरे से आप घर का दरवाजा खोल रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं और आज आपकी नजर ढूंढ रही है आपके अपने बच्चों पर। आपके बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन विश्व में कहीं पर भी हो, 1 सेकेंड में आप उनके नजदीक पहुंच जाइए। अपना हाथ बच्चों के सर पर रखिए, बहुत प्यार से उनको दृष्टि दीजिए। बच्चे, आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। ईश्वर की आप एक सुंदर अमानत हो। दिस इज योग। अब मन बुद्धि से अपने माता पिता के नजदीक जाइए, मामा के नजदीक जाइए। बहुत प्यार से मम्मा को जादू की झप्पी लगाइए, मम्मा थैंक यू वेरी मच। पापा के नजदीक जाइए, झुककर उनके चरणों को स्पर्श करिए। दिस इज योग। अपने परिवार से जुड़कर धीरे से घर के छत पर जाइए और आप देख रहे हैं एक बहुत सुरक्षित हाइड्रोजन बलून आपका इंतजार कर रहा है, 100% सेफ। धीरे से हाइड्रोजन बलून में बैठते हैं और ये हाइड्रोजन बलून धीरे से ऊपर की ओर, आपके घर के ऊपर, आप ऊपर से नीचे अपने घर को देख सकते हैं और बलून ऊपर की ओर, आपका घर एकदम छोटा दिखाई दे रहा, आपका शहर एकदम छोटा, ये बलून बादलों से होता हुआ, जैसे आप अपने शरीर के माता पिता से मिले उसी तरह आत्मा के माता पिता परम ज्योति परमात्मा, ज्ञान के सूर्य, प्रेम के सूर्य, आनंद के सूर्य, मन और बुद्धि से उस परम ज्योति से जुड़ना सर्वश्रेष्ठ योग है। महसूस करिए परमात्मा से ज्ञान गुण और शक्तियों के वाइब्रेशंस, और आपके चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षा का कवच। इस सुरक्षा कवच में आप स्वस्थ, संतुष्ट, संपन्न, समृद्ध और सफल। दिल से उस परमात्मा का धन्यवाद देते हुए, ऐसे सुंदर साथी को धन्यवाद देते हुए, अनगॉडली सर्विस, धीरे धीरे आप नीचे उतरिए। बलून से होते हुए धीरे धीरे नीचे उतरिए, आपको पृथ्वी दिखाई दे रहा है और आपका डेस्टिनेशन राजस्थान में शांतिवन। संकल्प किया हाइड्रोजन बलून राजस्थान के ऊपर, माउंट आबू के ऊपर, अपना की लेक देख पा रहे हैं, पांडव भवन देख पा रहे हैं, पीस पार्क देख पा रहे हैं, दिलवारा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे हाइड्रोजन बलून से अब धीरे धीरे शांतिवन की ओर, विशाल शांतिवन कॉम्प्लेक्स, आपका मनमोहिनी वन भी दिख रहा है, और धीरे धीरे बलून नीचे उतर रहा है डायमंड हॉल के ऊपर, जहां से आप यात्रा शुरू किए थे, यह हाइड्रोजन बलून धीरे धीरे उसी जगह सक्सेसफुली लैंडेड। आप उस हाइड्रोजन बलून से धीरे से उतरते हो, उसी गेट से चलकर अपने सीट पर ब्रकुटी के बीच में। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति।
कौन कौन ने यात्रा किए? कार कौन सा रंग का था? राइट, वेरी गुड। छत में क्या आपका इंतजार कर रहा था? बलून। कौन कौन अपने बच्चों से और पोतरों से मिले? कौन कौन अपने माता पिता से मिले? वाह, देखिए कितनी सुंदर एकाग्रता। कौन कौन परमात्मा से मिले? कैसा दिखता है वो? ज्योति स्वरूप, राइट। कौन कौन ने परमात्मा से वाइब्रेशंस लिए? कितना सुंदर यात्रा है। एक पायलट 300 लोगों को, उनके पूरे लगेज को, एविएशन फ्यूल को रखते हुए 30,000 के फुट पर उसको बैलेंस कर सकता है क्या? कर सकता है। हम और आप मन बुद्धि से नहीं कर सकते क्या? कर सकते। तो ये बोलना कि मन सुनता नहीं है, बुद्धि सुनता नहीं है, ये सही जवाब नहीं है। इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि उसका प्रैक्टिस नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू स्वामी भाई फॉर दिस वंडरफुल मेडिटेशन एक्सपीरियंस। और आपने जो टिप्स दी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जो एक्सरसाइज कराई, आई एम श्योर आप सभी को याद रहेगी, वो याद रहेगी एक्सरसाइज। जितना आप एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे उतना आप उस एनर्जी को फील करते रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू स्वामी भाई, जो आत्मा की यात्रा आपने कराई, और आत्मा के गुणों के और शक्तियों के बारे में बताया और कैसे आत्मा ड्राइव करती इस बॉडी को, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव करता, अपने स्पष्टता से हमारे बीच में रखा, और कैसे नींद का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है कॉन्सेंट्रेशन में, उसकी भी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉर्ड स्वामी भाई, थैंक यू वेरी मच।
हमारे बीच में मैं आमंत्रित करती हूँ किरण भाई पाटिल, आप आरटीओ इंस्पेक्टर मुंबई से हैं, और आपने विशेष एक बहुत सुंदर प्रेरणा गीत आपने लिखा है जो हाल ही में फरवरी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस गीत है। तो ये गीत यहाँ पर वीडियो में दिखाएंगे और भाई साहब भी कुछ कहना चाहेंगे, और उनका हम सम्मान कर रहे हैं फूलों से। स्वामी भाई, आप सब तालियों से इनका सम्मान करेंगे।
ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू, इनके ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल्स विंग के रजत जयंती के इस पावन अवसर पर मेरा जो लिखा हुआ महाराष्ट्र राज्य विभाग का परिवहन प्रेरणा गीत है, जो आज इस बड़े मंच पे सादर करने का इन्होंने मौका दिया, तो ये मेरे विभाग के लिए बहुत गौरवान्वित बाब है और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेरे विभाग की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति।
Oh, God.
जोरदार तालियां किरण भाई पाटिल के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ रमेश राव सोमाशे जी, आप मंच पर आए। स्वामी भाई आपका सम्मान करेंगे गुलदस्ते से। आप मुंबई कल्याण के प्रसिद्ध गायक हैं। आप प्रणय म्यूजिशियंस एंड बैंड के संस्थापक हैं एवं आप वहां के मुख्य गायक हैं। आपने कई जगह परफॉर्मेंस दिए हैं, जैसे कि श्री श्री रविशंकर जी, सत्य साई बाबा की समाधि आदि पर, सिद्धि विनायक मंदिर आदि, और लेटेस्ट आपका वेब सीरीज है बंदिश बैंडिट्स 2, इसमें आपकी विशेष भूमिका है। तो आपकी एक प्रस्तुति होगी, उसमें हम योग भी करेंगे और उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपका ग्रुप कहाँ पर है वो आपको बताया जाएगा।
ओम शांति। साथ में गाइएगा, भजन है आप सभी पे जो कृपा है, हमारे बाबा की जो कृपा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये भजन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैं गाऊंगा, दूसरी बार आपको गाना है। गाने के शब्द हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए साथ में, मेरा आपकी कृपा से। अब यह गाते हुए, मेरा आपकी कृपा से, थोड़ा जोर से, सब काम हो रहा है। जिनके जिनके काम बाबा की वजह से बन रहे हैं, सब जोर से गाइए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। म्यूजिक के साथ गाएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। गाइए, मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये
तमाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करते हो आप बाबा, करते हो आप बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तालियां बजती रहनी चाहिए, सभी के काम बन रहे हैं बाबा जी की वजह से, उन सभी के लिए। के साथ नाम संकीर्तन करेंगे, 1, 2, 3, 4।
गोविंद गोविंद बोल, कृष्ण गोविंद गोविंद बोल, कृष्ण गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद बोल, कृष्ण गोविंद गोविंद बोल, कृष्ण गोविंद। राधे गोविंद गोविंद बोल। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, बहुत बढ़िया गीत गाया और हम सब कनेक्ट हुए भगवान के साथ, और भगवान का प्यार हम सबके साथ है ये महसूस हुआ।